मैं एक प्रकार से मेरे मित्र जोसेफ बोज को यहाँ पर देखकर अचंभित रह गया था और मैं पीछे मुड़ा और मैंने उसके साथ हाथ मिलाकर कुछ समय को बिताया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे। इब्रानियों उसका पहला अध्याय, मैं उसका कुछ भाग को पढ़ना चाहता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा पद, आज रात के विषय के लिए ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि को रचा है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने में जाके बैठा है। आइए अब प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएं और अब उसकी दैविक उपस्थिति में यदि आपके पास कोई भी विनती है जो आप उसके लिए अवगत कराना चाहेंगे, क्या आप अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और यही आपकी विनती है जो परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हम अब आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नाम में जो आपका पुत्र है, और हमें यह आश्वासन दिया गया है यदि हम उसके नाम से कुछ मांगते हैं इसे प्रदान किया जाएगा। और आप हमारे इच्छाओं और हमारी जरूरतों को जानते हैं और आपने प्रतिज्ञा की है कि आप वो सब हमें देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। तो पिता, हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपने हमें सिखाया है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस धरती पर पूरी हो जैसे आसमान में पूरी होती है। यही आज रात हमारी विनती है, हो सकता है आपके इच्छा के अनुसार हमें इसे दें और इस सौभाग्यों को प्रदान करें। वचन को अभिषेक करें प्रभु, और सारे प्रचारकों और सुनने वालों को अभिषेक करें, और होने पाए आज रात हमारे बीच में पवित्र आत्मा आकर ये करने वाला बने, क्योंकि हम इसे उसके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। कल सुबह मैं समझता हूँ फुल गॉस्पल बिजनेसमैन के नाश्ते की सभा होगी। अक्सर जहाँ पर उनके पास एक पादरियों की सभा होती है, मेरे पास उनके नाश्ते पर बोलने का मौका है। इस समय के लिए यही वो केवल एक संस्था है, ये एक संस्था नहीं है, लेकिन केवल वो ही झुंड है जिससे मैं ताल्लुक रखता हूँ जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन है, और अब मैं बस उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर से बोलूंगा। अब आज रात हम भरोसा कर रहे हैं कि हमारा ये इकट्ठा होना व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपके पास थका हुआ आया हूँ, घिसा हुआ गला है और मुझे जरा श्वास से संबंधित, मैं टूसान से आया हूँ जहाँ पर वास्तव में अनुकूल और सूखा था, और मैं यहाँ पर आया हूँ और यह वास्तव में अनुकूल और नम है, तो यहाँ थोड़ा सा विपरीत मौसम है। यदि आप सारा का सारा पानी यहाँ पर लाते, यदि आप बस इसे हमारी ओर भेजते हैं, हम इसकी सराहना करते, लेकिन आप निश्चय ही इसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वहाँ पर एक दृष्टांत है। हमारी सारी एरिजोना में जो चीजें हैं, हमारे पेड़ पूरी तरह से कांटों से भरे हुए हैं, हर एक चीज कांटों से भरी हुई है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सूखा है। अब यदि वही झाड़ियाँ यहाँ पर उगती तो इस पर एक बहुत ही बढ़िया पत्ती आती। देखो, यह बिना पानी के है, इसी कारण से ये कांटेदार बन जाते हैं, और जब कलीसिया बिना जीवन के पानी के होती है, यह भी सूखी और कांटेदार बन जाती है, कांटेदार और छेददार इत्यादि। लेकिन यहाँ पर जीवन का जल बहता है, यह पत्तियों को खोल देता है और इसी तरह से कोमल, नरम, मधुर, पवित्र बनाता है, परमेश्वर के निमित्त स्वीकार करने योग्य। तो होने पाए प्रभु परमेश्वर आज रात हमें वो जल को दे जिससे हम कांटेदार न बने, लेकिन हम एक अच्छी पत्तियां बने जिससे वे थके हुए लोग उसके तले बैठ सकें, उस पेड़ की छाया के तले, और उनके प्राणों के लिए विश्राम को पा सकें। अब मैं आज रात विषय को लेना चाहता हूँ, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो, और मैं इस माइक्रोफोन को नजदीक लेता हूँ जितना मैं इसे नजदीक ले सकता हूँ, क्योंकि आवाज बहुत ही कम है। मैं यहाँ इब्रानियों 1:1 से पढ़ना चाहता हूँ। मैं आज रात एक विषय को लेना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने विशिष्ट गुणों के द्वारा अपनी पहचान को दे रहा है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर आवाज बहुत ही खराब है। परमेश्वर अपने विशिष्ट गुणों के द्वारा अपनी पहचान को देता है, अब लगभग कोई भी चीज उसके विशिष्ट गुणों के द्वारा पहचानी जाती है और मेरे पास कुछ यहाँ पर वचन है जिसे मैं लूंगा और कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसका मैं इसके साथ उल्लेख करूंगा। अब जैसे सारी प्रकृति में वे फूल और बहुत बार अपने विशिष्ट गुणों के द्वारा पहचाने गए हैं, यदि वे आपस में नजदीक आते हैं, एक जाति का फूल दूसरे जाति के उस फूल के विशिष्ट गुण उसकी पहचान को देंगे कि वो कौन सा फूल है। और जंगल के जीवन में बहुत सी बार मैं एक शिकारी हूँ और आपको ये जानना होता है कि उस जानवर का विशिष्ट गुण क्या है जिसका आप शिकार कर रहे हैं, या कभी कभी आप निश्चय ही भरमाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि वहाँ ऊपर ब्रिटिश कोलंबिया में वो स्टोन भेड़ होती है, मैं पिछली बारिश में यूकॉन के अंदर गया था, उसमें कुछ भाई अभी भी यहाँ पर हैं जो आप मेरे साथ वहाँ पर शिकार पर थे। अब यदि आप फर्क को नहीं जानते, जब आप एक भेड़ या एक हिरण पर चिन्हों को देखते हैं, आप फर्क को नहीं बता सकते हैं, आप एक कम समझ के शिकारी होते हैं, क्योंकि दोनों ही एक समान पद चिन्ह बनाते हैं, वे छलांग लगाते हैं जब वे दूर भागते हैं। और फिर आप एक को कुछ ही दूरी पर सिर छिपाए हुए खड़ा हुआ देखते हैं, इसलिए आप मुश्किल से ही फर्क को जान पाएंगे। उनका पिछला भाग लगभग एक ही आकार का होता है, यह सफेद होता है बिल्कुल जैसे कि हिरण होता है। उनका फर्क बताना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उनके सींग उनके विशिष्ट गुण की पहचान देते हैं उनके सींगों के द्वारा। भेड़ के गोलाकार सींग होते हैं और हिरण के सींग बाहर की ओर निकले हुए कांटेदार की तरह होते हैं। और एक बात होती है, हिरण भोजन के लिए ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाएंगे। और फिर बकरा भी चलता है, और बकरे के और भेड़ के भी एक विशिष्ट गुण होते हैं जिससे आप उनके बीच में फर्क को जान जाएंगे। जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, क्योंकि वे दोनों पहाड़ की ऊंचाई पर रहते हैं, आपको फर्क को जानना होता है। लेकिन यदि आप ध्यान दें, एक बकरी जब वो चलती है अपने आप में रुक रुक कर चलती है, जहाँ एक भेड़ अपने पैरों को नीचे इस तरह से बैठाता है जब वो चलता है, और उसके चलने पर एक विशिष्ट गुण होते हैं, वह अपने पद चिन्हों को बनाता है। आप अपने शिकार को उनके विशिष्ट गुणों के द्वारा जान जाएंगे कि वे क्या करते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं और क्या खाते हैं और इत्यादि, उनके विशिष्ट गुणों के द्वारा अपने आप की पहचान देते हैं। आप एक पर झपट्टा मारें और देखें कि क्या होता है जिस तरह से वे भागने लगते हैं, आप बता सकते हैं, आप विभिन्न जानवरों को उन विशिष्ट गुणों के द्वारा बता सकते हैं। तब क्या कभी आपने ध्यान दिया, मैं नहीं जानता आपके यहाँ पर यह होता है कि नहीं, पीला पत्थर चिरटा, तो ठीक है, फ्लिकर उसका सही नाम है, और एक जय पक्षी होता है। जय पक्षी और पीला पत्थर चिरटा दोनों लगभग एक ही आकार के पक्षी होते हैं, और आप दोनों को उड़ते हुए देखते हैं, वे दोनों लगभग एक ही तरह के पक्षी हैं। यदि आप उनके रंग को न देखें तो, लेकिन केवल उनकी ओर ध्यान दें, आप बता सकते हैं कि पीला पत्थर चिरटा कौन सा पक्षी है। जय पक्षी उड़ता है ज्यादा या कम सीधे रास्ते पर होता है, लेकिन पीला पत्थर चिरटा अपने पंखों को हिलाता रहता है। जब वह अपने पंखों को हिलाता है, वह नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है और फिर नीचे और फिर ऊपर। देखो, वह अपने आप को इस तरह से बांध के रखता है, और आप उसे विशिष्ट गुणों के द्वारा बता सकते हैं यह पीला पत्थर चिरटा है जिस तरह से वो उड़ता है। यदि आपने ध्यान दिया हो, वो बटेर जब बाहर आने लगता है और जिस तरह से वो ऊपर आता है, और फिर ध्यान दें, यदि आप एक दलदल में होते हैं जहाँ हो सकता है जहाँ वो बटेर हो, और एक चाहा पक्षी होता है और शिकारी इसे जानते हैं, वो विल्सन के चाहा पक्षी और जैक स्नाइप, वे जिस तरह से बाहर आते हैं और जाते हैं, जिससे वो पहचाने जाते हैं, वे अपने उड़ने के विशिष्ट गुणों के द्वारा अपनी पहचान को देते हैं कि वह किस प्रकार के पक्षी हैं। इसलिए यदि कभी आपने उन्हें सुना होगा, आप बस बता सकते हैं वो क्या था, जिस तरह से वे बाहर आते हैं वो क्या है, वे अपने उड़ने की विशिष्ट गुणों के द्वारा अपनी पहचान को देते हैं। जैसे एक पुरुष और एक महिला होती है, यह दोनों मनुष्य जाति हैं, लेकिन एक महिला के पास पुरुष से विभिन्न विशिष्ट गुण होते हैं। मैं यहाँ कुछ समय पहले पढ़ रहा था उस सुलेमान और रानी के बारे में, मैंने कभी यहाँ पर आपके लिए मेरे छोटे संदेश को प्रचार नहीं किया है, दक्षिण की रानी के बारे में जो सुलेमान को देखने के लिए आ रही थी और वो उस परखने के दान को देखना चाहती थी। मैं यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ इसके बारे में पढ़ रहा था, और उन्होंने कहा कि एक असुलझी बात जो सुलेमान के सामने रखी गई वह यह थी कि इस रानी ने एक महिला को लिया, या मेरा मतलब है बहुत महिलाओं को लिया, और उन्हें पुरुष के वस्त्रों को पहना दिया। अब यह उन दिनों में बहुत ही अजीब सी बात हुआ करती थी, लेकिन निश्चय ही यह आज आधुनिक है, और आप जानते हैं कि यह गलत है। बाइबल ने कहा एक महिला को इस तरह से नहीं करना चाहिए, यह महिला के लिए एक घृणित बात है, एक पुरुष के नए कपड़ों को पहनना, और न बदलने वाले परमेश्वर ने इसे कहा है, इसलिए यह सच है। तो हम देखते हैं कि सुलेमान ने उन्हें और नहीं देखा। उसने उन्हें चलने के लिए कहा और ऐसा ही कुछ करने के लिए, और तुरंत ही वह कहता है यह स्त्रियां हैं। देखो, उस महिला के विशिष्ट गुणों के द्वारा बता सकता है जिस तरह से वह खुद के लिए व्यवहार करती है। वह बताती है कि वह महिला है, पुरुष नहीं। और फिर हर एक चीज इसी तरह से होती है, वो अपने विशिष्ट गुणों के साथ होती है। जैसे कि बहुत से लोग दाएं हाथ के होते हैं और बाएं हाथ के होते हैं, वो इस तरह से विशिष्ट गुण होते हैं, वो अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। आप बता सकते हैं ये दाएं हाथ का व्यक्ति है या बाएं हाथ का व्यक्ति है, जिस तरह से वो अपने आप में व्यवहार करता है, जिस प्रकार से वह हमेशा ही बताते हैं कि वह सीधे हाथ का है या उल्टे हाथ का है। और याद रखना, यीशु के पास कुछ इसी तरह से था, जिससे वो दोनों हाथ लगभग दोनों एक समान होते हैं। उनके पास लगभग एक ही प्रकार के अंगूठे के निशान होते हैं, उंगलियों के निशान, छोटे चिन्ह और इत्यादि, बिल्कुल वैसे ही जैसा बायां हाथ और दायां हाथ के पास एक सी उंगलियां होती हैं। साधारण रूप से दोनों बिल्कुल एक समान के हाथ होते हैं, और वहां उनके बीच में केवल एक ही फर्क होता है कि एक दाहिना है और दूसरा एक बाईना है। यही केवल फर्क होता है। आप बता सकते हैं एक दाहिना हाथ है और दूसरा बाईना हाथ है। इसलिए इस पर यीशु ने कहा, मैं शायद हो सकता है यहाँ पर कुछ एक बात को डालूं। यीशु ने मत्ती 24 में कहा कि आत्मा के विशिष्ट गुणों की परख अंतिम दिनों में इसी तरह से होगी। वह दोनों इतने एक समान होंगे कि हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। देखा, बिल्कुल एक जैसे। आप अपने हाथ को उठाकर इस तरह से ऊपर पकड़े रखें। देखो, यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो उनमें से एक दूसरे के जैसा दिखाई देता है हर एक बात में, लेकिन उनमें से एक दाहिना है और दूसरा बाईना है। इसी तरह से अंतिम दिनों में आत्माएं हैं, वे कुछ हद तक ऐसे ही एक जैसे हैं, लेकिन उनके पास एक विशिष्ट गुण होता है जिससे उनकी पहचान होती है। एक सही होता है और दूसरा एक गलत होता है, और उनके विशिष्ट गुणों के द्वारा पहचान की जा सकती है। परमेश्वर का आत्मा उसके विशिष्ट गुणों के द्वारा पहचाना जा सकता है। समझे, परमेश्वर का आत्मा और कलीसिया का आत्मा, वहाँ पर एक कलीसिया का आत्मा है और एक परमेश्वर का आत्मा है, जो बिल्कुल थोड़ा भी कलीसिया के आत्मा के जैसा नहीं होता है। वहाँ एक संप्रदाय का आत्मा है, वहाँ एक राष्ट्रीय आत्मा है, वहाँ एक राष्ट्र की आत्मा है। हर एक राष्ट्र, जब आप उसमें जाते हैं, जब आप उसमें चलकर जाते हैं, वहाँ पर विभिन्न आत्मा को पाएंगे। मैं फिनलैंड के अंदर गया, वे अच्छे लोग हैं, लेकिन वहाँ एक फिनिश आत्मा थी। मैं जर्मन के अंदर जाता हूँ, वहाँ पर एक जर्मन आत्मा है। यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, जब हम उस वक्त भी इंडियाना में रहते थे। हम कुछ वर्ष पहले उस छोटे से सुपर मार्केट पर थे। मैं जब घर पर आया, हमें कुछ भोजन की वस्तु लेने के लिए जाना था, और मैं अपने रास्ते पर जा रहा था। हम, यह ग्रीष्मकाल का समय था, आप हो सकता है इसे विश्वास न करें, लेकिन हमने एक महिला को देखा जो एक तरह के कपड़ों को पहने हुए थी, और वह बहुत अजीब सी लगी, जिससे मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, वहाँ पर देखो, वो बहुत ही अजीब सी लग रही है, जिस तरह से उसने कपड़ों को पहना हुआ है, बाकी लोग जो कपड़े पहनते हैं उससे अलग, जिससे वो महिला की तरह नहीं दिखाई दे रही है। और उस महिला ने कहा, मैंने कहा, तो ये अमेरिका के जैसा आत्मा है। देखो, ये अमेरिका का आत्मा है। अब अमेरिका का आत्मा, इसे एक मसीह राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन इस राष्ट्र का आत्मा मसीह ही नहीं है। इसे एक मसीह राष्ट्र कहकर बुलाया जा सकता है, लेकिन यह उसके विशिष्ट गुणों से मिलो मिल दूर है। इसलिए इस महिला ने कहा, मैंने कहा, महिला ने कहा, तो ठीक है, क्या हम अमेरिका के नहीं हैं? कहा, मैंने कहा, नहीं, हम यहाँ पर रहते हैं, यह हमारा देश है, हम इसमें रहते हैं, हम इसे प्रेम करते हैं, यह संसार में सबसे उत्तम राष्ट्र है, लेकिन फिर भी हम अमेरिका के नहीं हैं। मैंने कहा, हम ऊपर से जन्मे हैं, पवित्र आत्मा नीचे उतर कर आया, और हम एक राज्य से ताल्लुक रखते हैं जो इस संसार का नहीं है। मैंने कहा, इसी कारण से हमारी बहनें इस तरह के कपड़े पहनती हैं, लंबे बाल रखती हैं, चेहरे पर लीपा पोती नहीं करती। देखो, उनके विशिष्ट गुण प्रभु के निमित्त पवित्रता की पहचान देते हैं, जो ऊपर से है। इसलिए हम एक राज्य के लिए देख रहे हैं, हम एक राजा के लिए देख रहे हैं, जो आकर उसके लोगों को उसके राज्य के लिए ले लेगा, और वे उनके गुणों के द्वारा पहचाने गए हैं, क्योंकि जायदाद इस धरती की या इस राष्ट्र की नहीं है, यह ऊपर महिमा में है। इसलिए वे एक नगर को देखते हैं जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है, वो ठीक तरह से पहचाने जाते हैं। काश मेरे पास किसी रात प्रचार करने के लिए पर्याप्त आवाज होती थी, लेकिन मैं उससे निकल आया हूँ। अब उसके विशिष्ट गुणों के द्वारा पहचाना जाना। हम यहाँ पर इसराइल के समय एक अच्छे उदाहरण को देखते हैं, जो प्रतिज्ञा देश के अंदर आया और परमेश्वर ने उन्हें उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार बुलाया था। उसने इब्राहिम को बताया कि वो क्या करेगा, उसका बीज इस अजनबी राष्ट्र में 400 वर्ष तक रहेगा और फिर वो उसे बड़े सामर्थी हाथों के जरिए से छुटकारा देगा और फिर उन्हें एक देश में जाना है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। और फिर जब प्रतिज्ञा का समय नजदीक आया, वहां एक फिरौन आता है जिसने यूसुफ की मान सेवकाई को नहीं पहचाना जो उनके बीच में थी, और इसे परमेश्वर ने एक नबी को खड़ा किया जिसका नाम मूसा था, और वह मनुष्य मिस्रियों के सारे ज्ञान से निपुण था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक महान चतुर बुद्धिमान मनुष्य था, क्योंकि वह मिस्रियों के ज्ञान को सिखा सकता था। वह एक पूरी तरह से छुड़ाने के लिए एक सही व्यक्ति के जैसा दिखाई दिया, लेकिन आप देखना, जिसे हम छुटकारा कहते हैं और जिसे परमेश्वर छुटकारा कहता है, इसमें फर्क है। अब इस मनुष्य को देखना जो सारे उसके नीति शास्त्रों के साथ था। वह जानता था उसने इसराइल को छुड़ाने के लिए जन्म लिया है, फिर भी वो उसकी सारी शिक्षा के साथ, जिसके बारे में वो सब जानता था, और ये जानते हुए कि वो परमेश्वर से एक काम करने के लिए बुलाया हुआ है, उसके पास वो सब, उसके पास उसकी बैचलर ऑफ आर्ट की और उसकी PhD और LLB और इत्यादि की डिग्री थी, और वह इसराइल को छुड़ाने के लिए निकल पड़ा और वह पूरी तरह से हार गया था। अब ध्यान देना, ये ऐसा दिखा उसके पांव मिस्र के सियासन पर होंगे फिरौन बनने के लिए, जिससे वो इसराइल की संतान को छुड़ा सकेगा उसके फिरौन बनने के बाद, जब वो जाता है, क्योंकि वो सियासन के लिए उसके बाद कतार में था। लेकिन आप देखें, ऐसा इस तरह से करने पर परमेश्वर के विशिष्ट गुणों की पहचान नहीं होगी उसके लोगों को छुड़ाने में। उसने कहा वह उन्हें छुड़ाएगा, वह उन्हें एक सामर्थी हाथों के द्वारा छुड़ाएगा, न ही मूसा की सामर्थी सेना के द्वारा, लेकिन परमेश्वर के सामर्थी हाथों के द्वारा। हम देखते हैं कि यह नबी दूर भाग गया और 40 वर्षों तक जंगल में था। फिरौन ने शिक्षा को उसके अंदर डालने के लिए 40 वर्ष ले लिए, और परमेश्वर ने उसके अंदर से निकालने के लिए 40 वर्ष ले लिए। तो हम पाते हैं, एक दिन वो पीछे उस रेगिस्तान में था, उसने प्रभु परमेश्वर से जलती हुई झाड़ियों में मुलाकात की, जो एक झाड़ी में अग्नि के स्तंभ के रूप में रखा हुआ था, और उसे जूते उतारने के लिए कहा गया कि जिस भूमि पर वो खड़ा था वो पवित्र थी। अब इस भले सभ्य पढ़े लिखे मनुष्य को देखना जो वो अब तक रहा था, अब परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद उसके बदलते हुए विशिष्ट गुणों को देखना। उसने लगभग वो कर दिया था। कभी कभी परमेश्वर इन बातों को एक ऐसे साधारण तरीके से करता है और एक ऐसे मूर्तापूर्ण तरीके से जो संसार के लिए सोचने का तरीका है। एक मनुष्य को ध्यान देना जो पूरी तरह से हारा हुआ है सारी मिस्र की सेना से और हर एक चीज जो उसके आसपास है, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, और अपनी सारी पढ़ाई लिखाई के साथ है, लगभग 40 वर्ष की उम्र में उसके श्रेष्ठता में है। यहाँ पर यह 80 वर्ष का बूढ़ा है, जो अगली सुबह को अपनी पत्नी के साथ खच्चर के पीठ पर उसे लादकर और उसके बालक को उसके गोद में बैठाकर और हाथ में छड़ी को लेकर मिस्र की ओर बढ़ रहा है उसे कब्जा करने के लिए। आप उस हास्यास्पद दृष्टि के बारे में बात करें, लेकिन ये परमेश्वर के विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक मनुष्य था जो उसके वचन पर विश्वास करता है। ऐसा ही है, ये बात ऐसी थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक मनुष्य आक्रमण करने के लिए मिस्र की ओर जा रहा है, जहाँ पर एक सेना हार गई थी, लेकिन यह क्या था, उसके विशिष्ट गुण और उसकी तकनीकें बदल चुकी थी। वह प्रभु के नाम से जा रहा था, मैं जो हूँ सो हूँ। बात ऐसी थी कि उसने उस पर कब्जा कर लिया, उसने कर लिया क्योंकि वह प्रभु की सामर्थ्य में जा रहा था। उसके मार्ग पर वो था, इसराइल की उस प्रतिज्ञा देश की ओर अगुवाई करते हुए वह अपने संस्थागत भाई मोआब के संपर्क में आया। अब मोआब किसी भी तरह से मूर्ति पूजक नहीं था, जो लूत के बेटियों की संतान थी, उनमें से एक संतान के वंश से मोआब था। अब वहाँ पर मैं इन दो राष्ट्रों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, तुलना करते हुए। यहाँ पर मिस्र था, एक छोटा लगभग बिखरा हुआ, उनके पास जाने के लिए कोई भी राष्ट्र नहीं था, कोई भी अधिकारी या कोई राजा नहीं, कोई नहीं या कोई भी छोटा बड़ा उनके बीच में नहीं था, बस कुछ ही लोग जो अपने मार्ग प्रतिज्ञा देश की ओर थे, और उन्हें मोआब के देश में से होकर जाना था, जो ठीक प्रतिज्ञा के मार्ग में था। अब मोआब भी यहोवा पर एक विश्वास करने वाला था और उनके पास एक नबी था और इज़राइल के पास एक नबी था, दोनों के पास नबी थे। और अब ध्यान करना, वे ऐसी जगह पर आए थे, वो संस्थापक राष्ट्र का नबी इस दूसरे राष्ट्र को श्राप देने के लिए नीचे आ रहा था, क्योंकि वह बस एक घुमक्कर था, उसके पास रहने के लिए कोई एक विशेष स्थान नहीं था। तो उन्होंने वहाँ पर आकर उन दो नबियों को देखा। जब यह सही रूप में बोलने की बात आती है, उनमें से दोनों वह बिल्कुल सही थे, क्योंकि ध्यान देना, बालाम उस बिशप ने उन्हें बताया, अब तुम मेरे लिए सात वेदियों को बनाना। सात परमेश्वर की संपूर्ण संख्या है, जो सात कलीसिया के युगों को दर्शाता है, सात सृष्टि करने के लिए दिनों को दर्शाता है और इत्यादि। अब ध्यान दें, सात परमेश्वर सात में संपूर्ण है, सात वेदियाँ और हर एक वेदी पर एक बैल को रखना, बिल्कुल ऐसी ही यह वेदी है जो इज़राइल की छावनी में उनके पास थी। वे यहाँ इज़राइल में थे, उसी वेदी के साथ वे यहाँ पर आए थे, और वही बलिदान, एक बैल और एक बैल, एक नबी और एक नबी, दो राष्ट्र आमने सामने थे। आज के दिन का यह एक बिल्कुल सिद्ध उदाहरण है जिसमें हम रह रहे हैं। यदि हमारे पास इसके अंदर जाने का समय होता था तो ध्यान देना, परमेश्वर इसे एक दृष्टांत में कर रहा है जिससे हम समांतर देखेंगे। अब बालाम को हर एक वेदी के लिए एक मेढे की आवश्यकता थी, जो एक आने वाले मसीहा में उसके विश्वास को बता रहा था। एक मेढा, एक नर भेड़, यह उसी प्रकार का बलिदान था जो वहाँ इज़राइल में था, वहाँ नीचे इज़राइल की छावनी में, यहाँ मोआब के पास। मूल रूप से वे दोनों ही सही थे, लेकिन ध्यान देना, वह सिद्धांत के रूप में सही थे। लेकिन एक नबी जो इज़राइल की छावनी में था, उसके पास परमेश्वर का विशिष्ट गुण था और परमेश्वर का वचन, वह उस युग के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर बना रहा, क्योंकि वो एक मार्ग में था जो प्रतिज्ञा की हुए देश को जाता है, समझे। अब जहाँ तक मूल रूप के भाग की बात है, बिलाम, बालाक बिल्कुल वैसे ही पहचाने जा सकते थे जैसे मूसा पहचाना गया था। लेकिन आप देखना, मूसा परमेश्वर का सही नबी हुआ था, न ही केवल मूल रूप के भाग में, लेकिन उसके पास परमेश्वर की पहचान थी। देखो, वो अपने कार्य पथ पर था, बिल्कुल वैसे ही जो परमेश्वर ने उस युग के लिए प्रतिज्ञा की थी, न ही नूह के युग के लिए, लेकिन तब के युग के लिए। मैं तुम्हें एक देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। वह उनके रास्ते पर थे और इज़राइल उनके नबी मूसा के साथ पहचाना गया था, जो उस युग के संदेश के साथ था। परमेश्वर के विशिष्ट गुण मूसा में पहचाने गए। एक अग्नि का स्तंभ उसके पीछे था, उसके पास क्रिया में प्राश्चित्ता भी थी। एक ना ही इसके लिए बोलते हुए, लेकिन यह क्रिया में थी, ना ही कि क्या होगा जो ठीक अभी है। ध्यान दें, उसके पास एक पीतल का सर्प था जिसे बीमार और पीड़ित लोगों के लिए ऊपर लटकाया गया था, इसलिए मूसा दैविक चंगाई का अभ्यास कर रहा था। उसके पास प्राश्चित्ता थी, वह पीतल का सर्प दर्शा रहा था कि परमेश्वर छावनी में था, और लोग उस पीतल की सर्प की ओर देख रहे थे और उन्होंने चंगाई को पाया। उसके पास एक घात की हुई चट्टान भी थी जो उसके पीछे आ रही थी और जो परमेश्वर की पहचान को दे रही थी, जिससे उनके बीच में जीवन का जल बना रहे, आनंद और उद्धार, जिससे कि वे नाश न हो, लेकिन उनके पास सनातन का जीवन था। यह एक नमूना है, यह जंगल में घात की हुई चट्टान मसीह का नमूना थी जो घात हुई थी। फिर वे प्रतिज्ञा के मार्ग पर यात्रा कर रहे थे, जो एक और पहचान थी परमेश्वर के विशिष्ट गुण को दिखाने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता ये दूसरा एक कितना मूल रूप से परमेश्वर के वचन के साथ है, उसके पास वचन का दृढ़ पालन था और साथ ही पहचान थी, और उनके बीच में परमेश्वर के विशिष्ट गुण थे। परमेश्वर ने खुद की पहचान दी थी। दो नबी, वे दोनों ही नबी थे और उनमें से दोनों ही मूल रूप से सही थे, लेकिन परमेश्वर मूसा में उसके विशिष्ट गुणों की पहचान दी, क्योंकि उसके पास परमेश्वर के विशिष्ट गुण उसके साथ थे। अब फिर से परमेश्वर के विशिष्ट गुण हमेशा ही अलौकिक होते हैं, क्योंकि वह अलौकिक है, परमेश्वर अलौकिक है। यह हमेशा ही उस दिन की आधुनिक विचारधारा की सोच के लिए असामान्य होता है, आप ये जानते हैं। परमेश्वर ने हमेशा ही लोगों की योजनाओं को गड़बड़ी में डाला है, हर एक युग में धार्मिक झुंड के लिए जो कभी होकर गया है। और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी एक व्यक्ति ने या लोगों के झुंड ने एक संदेश के ऊपर अपने आप को इकट्ठा करके संस्था हुए हों, लेकिन जैसे वे मर ही गए और उस खाचे पर चले गए और फिर कभी भी ऊपर नहीं आए, ऐसा कोई इतिहास नहीं है। वे लूथरन, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, वे बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल और इत्यादि फिर से कभी भी ऊपर नहीं आए जब वे इसे झुंड बनाने लगते हैं। परमेश्वर व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करता है। ध्यान दें, वह बहुत ही असाधारण है जिस तरह से सोचते हैं। देखो, हमें एक विचारधारा से नीचे आना है और हमें इस तरह से विश्वास करना होगा और तब परमेश्वर उसके वचन के साथ उसके पास आता है जिसकी उन्हें प्रतिज्ञा की है और इस वचन पर खुद की पहचान को देता है। यह झुंड इसके लिए नहीं जा सकता है क्योंकि ये इसमें विश्वास नहीं करते हैं। देखो, ये इसमें से खुद को अलग कर देते हैं। जैसे यूसुफ, वह दाऊद का पुत्र था और एक भला मनुष्य था। यूसुफ जो मरियम का पति था, वह एक भला मनुष्य था और कोई संदेह नहीं था, वो बाइबल को पढ़ता था, उन पत्रियों को निरंतर पढ़ता था क्योंकि वह एक मसीहा के आने के लिए देख रहा था और वह जानता होगा कि वचन ने क्या कहा है कि क्या बात जगह लेगी। यशाया ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी। तो ठीक है, अब इस जवान लड़की से वो विवाह करने जा रहा था जो मरियम थी। शायद हो सकता है उसकी 18 वर्ष की उम्र रही होगी और वह शायद थोड़ा उससे बड़ा होगा। और फिर जब उन्होंने सगाई को कर लिया ताकि विवाह करें, उन्हें दिखाया कि वह माँ बनने वाली है। अब यूसुफ के लिए इस प्रकार की बात पर सहमत होना यह बहुत ही कठिन था। कोई संदेह नहीं, लेकिन जो मरियम ने उसे बताया था, जो जिब्राइल से मुलाकात हुई थी, लेकिन हम देखते हैं जिस तरह से उसका गुण उसकी अगुवाई कर रहा था, उसने इसका संदेह किया। अब उसने पाया वह माँ बनने जा रही है इससे पहले उसका विवाह हो, और बाइबल में इसकी सजा मृत्यु है, पत्थर मारने के द्वारा। एक अनब्याही स्त्री जो मां बनने जा रही है उसे पत्थरवाह किया जाना होता था। इसराइल में कोई व्यभिचार नहीं था, इसे बाहर रखा गया था। इसलिए हम व्यवस्था विवरण में पाते हैं यह हमें ऐसा बताता है। अब हम देखते हैं ऐसा दिखाई दिया कि मरियम ढाल की तरह केवल यूसुफ को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी उस कार्य के लिए जो उसने किया था, क्योंकि यदि वह विवाह से पहले ही पाई जाती है कि वह माँ बनने वाली है, तब निश्चय ही उस पर पत्थरवाह किया जाएगा। तब उसके पास अब कोई तो होना है जो उसके लिए एक ढाल की तरह बनकर खड़ा हो सके, और यह अत्याधिक सा दिखा जैसे यह था वो जो करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यूसुफ उसकी बड़ी आकर्षित आंखों की ओर देख रहा था और उसने कहा होगा, यूसुफ, जिब्राइल ने मुझसे कहा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया किया होगा और यह बात जिससे तू गर्भवती होगी यह पवित्र आत्मा की ओर से है। यह परमेश्वर है, यही है वो जिसे परमेश्वर का पुत्र बुलाया जाएगा। और यूसुफ वो इसे विश्वास करना चाहता था, लेकिन यह असामान्य सी बात थी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी और बिल्कुल इसी तरह से आज भी है। यदि मेरे पास किसी भी असामान्य बात को लोगों को दिखाने का कुछ तरीका हो सकता था, यदि ये वचन के द्वारा पहचाना गया है, तब इसके विशिष्ट गुण साबित करते हैं यह क्या है। ये परमेश्वर क्रिया में है। यूसुफ इसे जानना चाहिए था, उसे जानना चाहिए था एक कुंवारी गर्भवती होगी, लेकिन वो इसके प्रति ईमानदार बना रहा। उसने अपने आप को उससे दूर नहीं रखना चाहा मन में, लेकिन वह इसे करने के लिए सोच रहा था। और तब प्रभु का दूत उसे एक स्वप्न में दिखाई दिया। क्या आपने कभी सोचा है वह उसे एक स्वप्न में क्यों दिखाई दिया? उन दिनों में कोई भी नबी नहीं थे, वो स्वप्न बहुत ही साधारण सा था, इसकी अनुवाद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। कहा, यूसुफ, दाऊद के पुत्र, मरियम को अपनी पत्नी करने से डरो मत, क्योंकि जो वह गर्भवती हुई है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। देखो, इससे यह बात समाप्त हो गई। देखो, वह उसके बाद ही उसके सपने में आया, लेकिन देखना वहाँ पर कोई भी नबी नहीं था जो वचन की पहचान दे, जैसे कि ये वो कुंवारी है जो गर्भवती होगी। देखा, तो इसलिए वह उसे सपने में दिखाई दिया क्योंकि वह ईमानदार था और बस एक भला मनुष्य था। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर किसी भी भले व्यक्ति के पास किसी तरह से आएगा और कार्य करने के द्वारा उस युग के लिए उस भले मनुष्य की पहचान देगा, यदि वो मनुष्य उस युग के लिए परमेश्वर का बुलाया हुआ है। अब लेकिन यह बहुत ही असामान्य बात थी, वे इसे समझ ही नहीं सकते थे, लेकिन हमेशा ही प्रकट होना उस युग के लिए प्रतिज्ञा वचन के अनुसार होता है। यह सब जो असामान्य बातें हैं। अब वहाँ पर कुछ लोग हैं जो शायद यहाँ वहाँ जाकर और कहते हैं तो ठीक है, यह असामान्य है, यही परमेश्वर है, यह असामान्य है, लेकिन आप देखना, इसे वचन के द्वारा पहचाना जाना होगा और वचन परमेश्वर है, समझे। और फिर इसे पहचान देने के विशिष्ट गुण पहचान को देते हैं कि यह कौन है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह घटित होगा और ऐसा घटित होता है, समझे। और इसके विशिष्ट गुण परमेश्वर का वचन है जो विशिष्ट गुणों के द्वारा पहचाने गए हैं कि क्या हो रहा है। उसने कहा अंतिम दिनों में वह पवित्र आत्मा को ढेलेगा, उसने इसे किया। इसके विशिष्ट गुण ने पहचान दी कि ये परमेश्वर था, उसके वचन ने प्रतिज्ञा की थी। देखो, वह अपने आप में हमेशा ही पहचान देते हैं। अब हमेशा ही हर समय वचन सुधार करता है। जब वचन ने कहा कि ये गलत है, क्या कभी आपने ध्यान दिया, यह नूह के दिनों में था जिसने वैज्ञानिक युग को सुधार किया था। वो परमेश्वर पानी को आकाश से नीचे लाने जा रहा था। ये मूसा था, देखो, जिसने सुधार किया था जब वे सब मिस्र में बस गए थे और इत्यादि, लेकिन परमेश्वर के वचन को आना ही था ताकि पहचाना जाए, और वचन की सच्चाई गलतियों को सुधार करती है। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, हो सके तो हम यहाँ थोड़ा गहराई में जाएंगे। मैं शिक्षा या सिद्धांत के लिए प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे बस एक बात को पूछने दो। यीशु वो वचन था, हम यह जानते हैं, बाइबल बताता है कि वो था। संत यूहन्ना पहला अध्याय, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो अभी भी वचन ही है। फिर जब वो अपने विचारों का अर्थ बता सकता है, उन्हें यह जानना चाहिए कि यह वचन ही था, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा कि वो ऐसा ही करेगा, वो नबी था। अब ध्यान देना, हम देखते हैं कि जब उसने जन्म लिया था, लगभग 12 वर्ष की उम्र का था, वह मंदिर के पर्व के लिए गया और वे वहाँ उनके फसव पर्व के लिए गए थे, और जब वे वापस अपने मार्ग पर थे और वे अपनी 3 दिन की यात्रा पर गए थे और उन्होंने उसे खो दिया। वे अर्थ लगा रहे थे, सोच रहे थे, मेरा मतलब वे अनुमान लगा रहे थे कि वो वहाँ बाहर अपने लोगों के बीच था। हम इसमें से एक बात को सीख सकते हैं, ऐसा ही बहुत कुछ आज है। अब आप जो मेथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, कैथोलिक और जो कोई भी आप हैं, देखो, आप भी उसी बात को कर रहे हैं। आप अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि वेस्ली के पास एक महान बेदारी थी, लूथर के पास एक महान बेदारी थी और पेंटिकॉस्टल के पास एक महान बेदारी थी। आप इसका अनुमान लगा रहे हैं कि वो लोगों के बीच में है, जबकि कभी कभी वो वहाँ पर नहीं होता है। वे उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर चले गए। उन्होंने उसे कहाँ पर पाया, जहाँ पर उन्होंने उसे छोड़ा था, उस यरूशलेम पर। और जब उन्होंने उसे पाया, वो क्या कर रहा था? एक छोटा 12 वर्ष की उम्र का लड़का, शायद वो कभी भी स्कूल नहीं गया हो, जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था उससे अधिक वो नहीं जानता हो। और यहाँ वो मंदिर में था, उन याजक लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के बारे में वाद विवाद कर रहा था, और वे उस बालक की बुद्धि पर अचंभित रह गए थे। क्यों? क्योंकि वो वचन था। अब देखना, अब ध्यान देना, और अब मैं आपको, जो कैथोलिक लोग हैं, उनका अनादर नहीं कर रहा हूँ, जो मरियम को परमेश्वर की माता कहकर बुलाते हैं, लेकिन मैं बस आपको यहाँ पर एक छोटी सी गलती को दिखाना चाहूँगा। यदि कलीसिया मरियम के ऊपर बनी है, देखो क्या होता है। अब उसने वहाँ पर आकर और उसने कहा, तुम्हारे पिता और मैं आंसू बहाते हुए तुम्हें तलाश कर रहे थे। उस बयान को देखना, उसने तब अपनी खुद की गवाही को दोष लगाया। उसने कहा, तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें आंसू बहाते हुए तलाश कर रहे थे। शब्दों पर ध्यान दो, वो वचन था। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के कार्य में होना है? वचन को देखना, जो गलती को सुधार करता है। ठीक वहाँ उन याजकों के सामने उसने अपनी गवाही को उजाड़ दिया था। कहा था कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, और यहाँ पर वो कहती है कि उसका पिता यूसुफ है। देखो, यहाँ शब्दों को आप तुरंत पकड़ सकते हैं, वो वचन था। अब आप जानते हैं कि एक 12 वर्ष का लड़का ऐसा नहीं करेगा, वो वचन था, वह उस युग का कहा हुआ वचन था। इसलिए परमेश्वर का पहचाना गया विशिष्ट गुण जो मसीह में था, उसने गलतियों का सुधार किया। उसने कहा, उन्होंने कहा, क्यों? हम मूसा के चेले हैं। देखा, उसने कहा, यदि तुम मूसा के चेले होते थे तो तुम मुझे जानते। उसने मेरे लिए लिखा था। मूसा ने कहा था, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरे जैसे एक नबी को खड़ा करेगा। तुम मुझे जान जाओगे यदि तुम मूसा को जानते थे। और देखो, वचन हमेशा ही उस दिन की गलती को सुधार करता है, लेकिन लोग इसे विश्वास करना पसंद नहीं करते हैं। वह बस उसी बात पर अटके रहते हैं बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन यीशु ने अपनी माँ का सुधार किया और उसकी माँ गलती में थी क्योंकि उसने पहले कहा था कि वह बालक पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ था और यहाँ पर उसने अपनी गवाही को घुमा दिया और कहा यूसुफ उसका पिता है, वो यीशु का पिता है। अब यदि वो यूसुफ का पुत्र होता था, यदि वो अपने पिता के कार्य को करता था, वो वहाँ पर सुतार की दुकान पर होता था, लेकिन वो वहाँ उस मंदिर में अपने पिता के कार्य पर था, उन संस्थाओं को लताड़ रहा था। देखा, वो अपने पिता के कार्य पर था, केवल 12 वर्ष का लड़का। कहा, क्या तुम नहीं जानते मुझे अपने पिता के कार्य पर होना ही है? क्या आपने ध्यान दिया जब यीशु की शैतान के द्वारा परीक्षा हुई थी, उसके विशिष्ट गुण वहाँ पर थे। जब वो उसकी परीक्षा में था, उसे परमेश्वर होने की पहचान दी गई क्योंकि वो वचन के साथ बना हुआ था। देखा, शैतान ने यीशु से कहा, ऐसा लिखा है। यीशु ने कहा, ऐसा भी लिखा है। वो ठीक वचन के साथ बना रहा था। परमेश्वर विभिन्न समय में, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर विभिन्न समय में, पुराने समय में, भांति भांति तरह से, बहुत प्रकार से उसके नबियों को दर्शन के द्वारा खुद की पहचान दी। जो एक नबी के विशिष्ट गुण थे, जो उसने पहले से होने वाली बातों को बताया और यह घटित हुए थे। अब यह उस नबी के विशिष्ट गुण थे, जो उसकी पहचान थे कि वो परमेश्वर उसके साथ था। तब यह उस दिन के वचन को अनुवाद का अधिकार देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन नबियों के पास आता है। उस नबी का विशिष्ट गुण यह है कि होने वाली बातों को पहले से बताते हैं। बाइबल ने कहा, यदि वहाँ पर एक ऐसा कोई है और जब वो कहता है यह बात होने वाली है, फिर आप उसकी सुनते हैं। यदि यह घटित नहीं होती है, उस पर विश्वास मत करो, उससे मत डरो, लेकिन मेरा वचन उसमें नहीं है। लेकिन यदि यह पूरा होता है, तब मेरा वचन उसमें है। यही उसकी पहचान है, यही एक नबी के विशिष्ट गुण है। अब परमेश्वर विभिन्न समय में यही है, इसी तरह से उसने उसके विशिष्ट गुण को दिखाया, उसकी खुद की पहचान जो मनुष्य के लिए है, एक मनुष्य के जरिए से बोलते हुए, जिसे एक नबी कहकर बुलाया गया था। अब बाइबल ने कहा, परमेश्वर विभिन्न समय में भांति भांति तरह से नबियों में से होते हुए उन पिताओं से बातें की थी। हम यह भी पढ़ते हैं दूसरा पत्रस में कि सारा परमेश्वर का वचन उनके द्वारा लिखा गया था। पहले के मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा चले और पवित्र शास्त्र को लिखा। वे नबी थे, वचन उनके पास आया और उन्होंने इसे लिखा। इसे वहाँ पर प्रेरणा के नीचे लिखा। सबसे पहले वे पहचाने गए नबी थे, फिर उन्होंने प्रेरणा के वचन को लिखा और उनके पास दैविक प्रकाशन का अनुवाद था, क्योंकि यह मनुष्य में परमेश्वर था। अब इसी तरह से उसने उसके पहचान के विशिष्ट गुणों में अपने आप को दिखाया। उनके वे दर्शन प्रमाणित हुए थे। परमेश्वर के विशिष्ट गुण उनमें थे, जो खुद को लोगों के लिए ज्ञात करवा रहा था। अब केवल इसी तरह से वो मसीह में था, एक नबी बस एक छोटा सा अंश था। यीशु परमेश्वर की संपूर्णता था और परमेश्वर मसीह में था, खुद को संसार से मेल मिलाप करा रहा था और उसके विशिष्ट गुणों ने उसकी पहचान दी थी कि वो क्या था। यहाँ तक कि उसने यह कहा, यदि मैं मेरे पिता के कार्यों को नहीं करता हूँ, तब तुम इसका विश्वास मत करना। यदि मेरे पास पिता के गुण नहीं है, तब तुम मुझ पर विश्वास मत करना। मैं जो दावों को करता हूँ, उस पर विश्वास मत करना। यदि मुझ में मेरे पिता के गुण नहीं पाते हैं, तब तुम उसका विश्वास करना भी मत। अब उसके विशिष्ट गुण कभी भी नहीं बदलते हैं, वे उसके गुणों को नहीं बदलता है, ना ही फिर एक मेमना उसके गुण को कभी बदल सकता है, या कोई भी चीज उसके विशिष्ट गुणों को नहीं बदल सकती है, क्योंकि जब तक ये उसके मूल में है, यह मूल ही होता है। और यदि आप कोई भी चीज को बदलते हैं, तब आप इसे उसके मूल से बदल देते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक सुअर को ले सकते हैं, आप एक सुअर को धो सकते हैं और उसके पैर के नाखूनों को रंग सकते हैं जैसे स्त्रियां करती हैं, और उसे लिपस्टिक लगा दें और इसे एक अच्छे वस्त्र को पहना दें, उस पुराने सुअरी को बदल दें जो सीधा वापस उसी कीचड़ में चली जाएगी, फिर से वहीं चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक सुअरी है। ऐसा ही है, लेकिन आप जानते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। एक मेमना ऐसा नहीं करेगा, वो यहाँ तक कीचड़ में जाएगा भी नहीं, वो उसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता। यही उसके विशिष्ट गुण है। देखा, आप हो सकता है उसे उसी तरह के कपड़ों को डालें, लेकिन निश्चय ही वो नहीं करेगा, वो निश्चय ही नहीं जाएगा। बाहरी रूप महत्व नहीं रखता, यह तो अंदर से होता है। अब परमेश्वर सारे जीवन को देने वाला स्तोत्र है, इसे समझने से चूकना मत। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो कुछ मुझ में है आप समझ जाएं, ताकि आप कुछ तो देखें, समझे, ये आपके भले के लिए है मित्रों, ये आपसे संबंधित है। देखा, मैं यहाँ पर ऐसे ही दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसीलिए नहीं आया कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आने की अगुवाई महसूस की। मैंने महसूस किया कि प्रभु की सेवकाई जो मुझे मिली थी, जिसे यहाँ लोगों के बीच में यहाँ दिखाना ही है, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसे देखें कि परमेश्वर अब वास्तव में क्या है। वो उसका प्रतिज्ञा किया हुआ वचन है, वो हमेशा ही वचन होता है, और वो विशिष्ट गुणों के द्वारा अपनी पहचान को देता है जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है। एक विशेष चरित्र एक समय पर ऊपर आ जाएगा जो वचन में है, तब उस व्यक्ति का विशिष्ट गुण जिसे ऊपर आने की पहचान देना है, ये वही व्यक्ति है। यही वो कारण है यीशु को होना था कि वो कौन था, उन्हें उसे देखना चाहिए था। कोई आश्चर्य नहीं, वे अंधे थे। बात ये थी, कहा कि भले ही उसने बहुत से चिन्ह चमत्कार किए हैं, फिर भी वे विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि यशायाह ने कहा उनकी आंखें हैं और देख नहीं सकते, और कान हैं और सुन नहीं सकते। देखा, हर एक युग में, न कि केवल उसके युग में, लेकिन हर एक युग में कैसे परमेश्वर विभिन्न समयों में भांति भांति तरह से, तब भी वे बस इसे नहीं पकड़ पाए थे। अब उसके विशिष्ट गुण कभी भी नहीं चूकते हैं, यह हमेशा ही एक से होते हैं। अब याद रखना, उसके विशिष्ट गुण, परमेश्वर के विशिष्ट गुण कभी नहीं चूक सकते हैं। यदि यह चूक जाते हैं तब परमेश्वर चूक गया है। और बाइबल ने इब्रानियों 13:8 में कहा, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, इसलिए वह न बदलने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी उसका आदि में गुण रहा था, वह अब भी उसी गुण के साथ है। जहाँ कहीं भी जो भी उसने कार्य किए, किसी भी समय में उसने जो कुछ भी किया, वो हर एक समय पर उसी तरह से करता है। यदि वो नहीं करता है तो उसका गुण बदल चुका है। देखो, और उसका विशिष्ट गुण कुछ तो प्रदर्शित करेगा जो परमेश्वर का नहीं था, समझे। तो हम नहीं जानेंगे कहाँ, जैसे पौलुस ने कहा, यदि एक तुरही साफ आवाज को न दे, कौन अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करेगा। यदि तुरही एक साफ आवाज को नहीं देती है, अब यदि तुरही आवाज को देती है पीछे हटो, तब हमें उसी बात को करना है। अब तुरही आवाज को देती है आगे बढ़ो, हमें उसी बात को करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन तुरही क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर की पहचान देता है। चाहे ये कहती है ऊपर जाओ, बैठ जाओ, वापस जाओ, हथियार को लो, ये जो कुछ भी हो, ये परमेश्वर की तुरही की आवाज है। और एक अस्पष्ट आवाज, जब बाइबल कहती है एक फलाना बात जिसे घटित होना है, कोई तो कहता है ओ यह तो किसी और दिन के लिए था, तब वहाँ पर एक अस्पष्ट आवाज होती है, तब आप नहीं समझ पाते कि क्या करना है। यीशु ने कहा, मेरे पास मेरे जीवन को लेने की सामर्थ्य है और इसे फिर से जिलाने की सामर्थ्य है। वहाँ पर कोई भी अस्पष्ट आवाज नहीं है। स्त्री ने कहा, हम जानते हैं कि मसीहा आएगा, और जब वो आएगा वह हमें उन बातों को बताएगा, जैसे उसने किया। उसने कहा, मैं वो हूँ, उसमें कोई अस्पष्ट आवाज नहीं है, मैं वो हूँ, आमीन। उन्होंने कहा, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। उसने कहा, उसमें से हर एक जन मर गया। उसने कहा, लेकिन मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर से उतरी है। कोई अस्पष्ट आवाज नहीं है, मैं जीवन का पेड़ हूँ जो अदन के बगीचे से है। नहीं, इसके बारे में कोई अस्पष्ट आवाज नहीं है, निश्चय ही नहीं, वो हर एक चीज में स्पष्ट था जो उसने किया। बाइबल एक अस्पष्ट आवाज को नहीं देती है, यह उसकी आवाज में परमेश्वर के विशिष्ट गुणों की पहचान देती है। यीशु ने संत यूहन्ना 10:37 में कहा, यदि मैं अपने पिता के कामों को नहीं करता हूँ जो, और मेरे पास मेरे पिता के गुण नहीं हैं, तब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करना। वे एक हैं, वे उसके गुणों की मुझ में पहचान देते हैं जो उसके विशिष्ट गुण हैं। क्योंकि पिता वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और उस युग के लिए प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर के विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित किया। अब यदि वो मूसा के समय में रहा होता, ये तब काम नहीं करता, और यदि मूसा उसके समय में रहता तो ये तब काम नहीं करता, यदि वह नूह के समय में रहता तो ये तब काम नहीं करता, और यदि नूह उसके समय में रहता था तो नूह उस दिन के लिए उन बातों की भविष्यवाणी को कर रहा था, और उसके विशिष्ट गुण और जो उसने किया वो परमेश्वर के वचन के साथ पहचाना गया, और मूसा ने उसी बात को किया था। और यहाँ यीशु आता है, और उस युग की प्रतिज्ञा किया हुआ वचन परमेश्वर के विशिष्ट गुण के द्वारा यीशु मसीह में पहचाना गया, जो कि परमेश्वर है, आमीन। और अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का उंडेला जाना उन साधारण लोगों के ऊपर जो लोगों के साथ परमेश्वर के विशिष्ट गुणों की पहचान दे चुका है। उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, यह वचन है। उसने कहा वो इसे करेगा, कोई भी इसे वापस नहीं ले सकता है। उसने कहा वो इसे करेगा। इसलिए ये सारी बातें जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है, यही है जो वो करता है। यह उसके विशिष्ट गुणों की पहचान देता है। जी हाँ श्रीमान, इसे विश्वास मत करना, मेरे दावों पर विश्वास मत करना यदि मेरे विशिष्ट गुण परमेश्वर से नहीं है तो। अब ध्यान देना, यूहन्ना 14:12, वो जो मुझ पर विश्वास करता है उसने कहा यह मेरी पहचान है, मेरे विशिष्ट गुण है। वो जो मुझ पर विश्वास करता है वह कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। यही पहचान देता है कि मसीह के गुण उसमें है जो उसके विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। आमीन। मैं ठीक अभी बहुत ही धार्मिक महसूस कर रहा हूँ यदि मेरा गला भराया है तो। हाँ श्रीमान, ओ प्रभु देखो इसके बारे में वहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। जो उसका जीवन है, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, वो काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। देखो यह विशिष्ट गुणों की पहचान देता है। उसने उसी बात को कहा, यदि मेरे गुण उसके खुद की पहचान नहीं देते हैं कि परमेश्वर उसमें है, तब उस पर भी उस पर विश्वास मत करना। अब वो उसने यह भी कहा कि वो उसमें पहचाना जाएगा। तब यह यदि ये उसकी पहचान नहीं देते हैं, तब ये वो नहीं है जो वो कहता है। और आज यदि मसीह अपनी खुद की पहचान नहीं देता है, मसीह के विशिष्ट गुण हमें पहचान देते हैं। मसीह होने की नाई वचन पर विश्वास करते हुए, यीशु वो वचन था, इसलिए उसे वचन पर विश्वास करना था। और हम कैसे कह सकते हैं कि हम मसीह के हैं और उस बाइबल के कोई वचन का इनकार करें? मसीह का पवित्र आत्मा वो परमेश्वर तुम में है और यह हर एक प्रतिज्ञा को एक आमीन के साथ विराम चिन्ह को लगाएगा। बाइबल ने कहा यह चिन्ह उसके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर का आत्मा ने कहा आमीन। देखा, उनमें से एक यह नहीं कहता है नहीं यह किसी और युग के लिए है, यह केवल चेलों के लिए था। जाओ तुम सारे संसार में जाकर हर एक सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। वो हर कहीं सारे संसार में जो विश्वास करता है, यह चिन्ह उसके पीछे जाएंगे। वही चीज कल आज और युगानुयुग एक सा है। विशिष्ट गुण पहचाने गए हैं, यही इब्रानियों 1:1 को बनाता है। नबियों के द्वारा पिताओं से विभिन्न समय में बातें कर रहा है, मसीह की पहचान दे रहा है जो आज उन्हीं विशिष्ट गुणों के द्वारा पुनरुत्थित हुआ है जो उसके विभिन्न समय में किया। क्या आपने ध्यान दिया? परमेश्वर उसके तरीकों को कभी नहीं बदलता है। बाइबल के पुराने समय में जब एक स्वप्न देखने वाला एक स्वप्न को देखता है और उस देश में यह देखने के लिए कोई नबी नहीं था कि सपना सही है या गलत है, उनके पास इसे जांचने का दूसरा तरीका था। वे उस व्यक्ति को लेते जिसने कभी स्वप्न को देखा है, उसे उस मंदिर में ले जाते हैं। हारून का छातीबंद था जो महायाजक था, उस कार्यपद पे था, और वह स्वप्न देखने वाला इस सपने को बताता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितना अच्छा दिखाई देता है, यह कितना सच्चा दिखाई देता है। यदि वहाँ पर अलौकिक उजाला उन पत्थरों पर नहीं चमकता था जिसे उरीम तुरीम कहते थे, बाइबल अध्ययन करने वाले इसे समझते हैं, तब मैं परवाह नहीं करता यह कितना सच्चा दिखाई देता हो, यह ऐसा नहीं था। परमेश्वर की असाधारणता, परमेश्वर का गुण, उसके विशिष्ट गुणों को अलौकिक में प्रदर्शित करना था, यह दिखाने के लिए कि उसने संदेश पर खुद की पहचान को दी है। आमीन। मैं आज रात उसी बात को कहता हूँ, वह पुराना उरीम थुरीम चला गया है, लेकिन वो वचन अभी भी वही बात है जो परमेश्वर के विशिष्ट गुणों की पहचान देता है, उस घड़ी की प्रतिज्ञा जिसमें हम रह रहे हैं। यही परमेश्वर को एक सा बनाता है जैसे वह था। विभिन्न समयों में भिन्न भिन्न तरीकों से नबियों के द्वारा बाप दादाओं से उसने बातें की, और नियम और वे नबी यूहन्ना के आते तक ही रहे। उसके बाद से लेकर परमेश्वर का राज्य है। ध्यान देना, लेकिन अंतिम दिनों में उसी बात को बोल रहा है जो उसने तब कही थी उसके पुत्र यीशु मसीह में से होते हुए। परमेश्वर विभिन्न समयों में भिन्न भिन्न तरीकों से नबियों के द्वारा बाप दादाओं से उनसे बातें की, इस अंतिम समय में उसी बात को कर रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, बाप दादाओं से उसके पुत्र यीशु मसीह के जरिए से। उसे मुर्दों में से जिलाया और वह हम में जीवित रहता है, अपनी पहचान को दे रहा है और हमें होने वाली बातों को बता रहा है जो हृदय की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर विभिन्न समयों में भिन्न भिन्न तरीकों से नबियों के द्वारा बाप दादाओं से उसने बातें की, इस अंतिम समय में उसके पुत्र यीशु मसीह के जरिए से करता है। वचनों को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, यह बिल्कुल उसी तरह से है। जैसे मैंने इससे पहले कहा था, परमेश्वर को इस वचन का अनुवाद करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वह अपने वचन का खुद अनुवादक है। जब वो कुछ भी कहता है यह घटित होता है, यही अनुवाद है। उसे किसी की भी कहने की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, मैं सोचता हूँ इसका मतलब ये है। परमेश्वर उसके खुद के अनुवाद के द्वारा इसकी पहचान देता है। उसके यदि प्रतिज्ञा उस दिन के लिए की गई है, तो हम लूथर के उजाले में नहीं जी सकते हैं, हम वेस्ले के उजाले में नहीं जी सकते हैं, हम उसमें से किसी के भी उजाले में नहीं जी सकते हैं। हमें उस उजाले में जीना होगा जो इस दिन के लिए प्रतिज्ञा है। क्या हो यदि मूसा मिस्र में जाकर और कहा होता, तो ठीक है, हम एक बड़े जहाज को बनाएंगे, हम इस देश को बहा देंगे, वह नील नदी ऊपर आ जाएगी। वे उस पत्री की ओर फिर से देखते, वहाँ पर इसके लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं है, यह सही बात है। लेकिन आप देखना, उसने परमेश्वर के नबी की नाई खुद की पहचान दी, क्योंकि जो कुछ भी उसने कहा वह पूरा हुआ था। तब उन्होंने जान लिया उसके पास प्रभु का वचन था। फिरौन के पास बर्छी और भाले थे, लेकिन मूसा के पास वचन था। तो जब वे समुन्द्र में चले गए, वे सारे बर्छी भाले समुन्द्र के नीचे चले गए, और मूसा इसराइल को समुन्द्र के उस पार सूखी भूमि पर लेकर गया, क्योंकि उसके पास वचन था और वो उस घड़ी का वचन था। मूसा उस घड़ी के लिए प्रकट वचन था, एलिया उस घड़ी के लिए प्रकट वचन था, मसीह प्रकट हुआ वचन था, और वो प्रतिज्ञाएं उसने की थी। थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे न देखेगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक तुम में संसार के अनंत तक रहूंगा, और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। उसने इन बातों की प्रतिज्ञा की है। यह क्या है? यह परमेश्वर के विशिष्ट गुण हैं, जो उसके वचन को प्रदर्शित कर रहा था, जैसे उसने हर एक युग में किया है। मलाकी 4, उसने कहा, प्रभु के बड़े और भयानक दिन आने से पहले, देखो मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वो पुत्रों का विश्वास पिता की ओर फेरेगा। उस दिन के आने से पहले उसने इसकी प्रतिज्ञा की है। यीशु ने संत लूका के 17वां अध्याय में कहा, जैसे सदोम के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ है, जब प्रकाशन अपने आप में खुल रहा है। उन दिनों में जब संसार सदोम के जैसा हो जाएगा, तब यह कैसा होगा? उस वचन के विशिष्ट गुण पूरे हुए हैं। परमेश्वर उसके विशिष्ट गुणों के द्वारा अपनी पहचान को दे रहा है, विशिष्ट गुण जो उसके हमेशा ही रहे हैं, वह इसे नहीं छोड़ सकता है। अंतिम दिनों में वह उसके पुत्र के जरिए से पहचान देता है। ध्यान देना कैसे परमेश्वर हमेशा ही इसे करता है, वो उसके तरीके को कभी नहीं बदलता है। वे तीन व्यक्ति जिन्होंने अब्राहम से बातें की, जैसे हम वहाँ बस बातें कर रहे हैं, उन सदोम के दिनों में अब्राहम एक मनुष्य था जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञाओं पर लिया। सारा उसकी पत्नी जो 65 वर्ष की थी, अब्राहम 75 वर्ष का था, तब परमेश्वर ने उसे बुलाया। उसने कहा उन्हें एक पुत्र होने जा रहा था, अब्राहम को सारा के जरिए से एक पुत्र होगा। यह शायद थोड़ा सा हास्यास्पद सा दिखाई देता है, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ उसने वो सारी छोटी छोटी जूतियों और बुनाई इत्यादि को तैयार कर रही होगी, क्योंकि उनके पास यह बालक होने जा रहा था। पहले 28 दिनों के बाद किसी कारण से अब्राहम ने शायद सारा से पूछा होगा, तुम कैसा महसूस करती हो प्रिय? उसने कहा कोई फर्क नहीं, प्रभु की महिमा हो, कुछ भी हो, हमारे पास ये होगा। तुम कैसे जानते हो? परमेश्वर ने इसे कहा है। एक वर्ष बीत गया, तुम कैसा महसूस करती हो प्रिय? कोई फर्क नहीं है, कुछ भी हो, हमारे पास ये होगा, परमेश्वर ने इसे कहा है। 5 वर्ष बीत गए, तुम कैसा महसूस करती हो प्रिय? कोई फर्क नहीं, कुछ भी हो, हमारे पास ये होगा, परमेश्वर ने इसे कहा है। ये क्या था? उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने परमेश्वर की तरह व्यवहार किया, वो प्रतिज्ञा वचन के निमित्त बना रहा। 25 वर्ष बीत गए, जूतियाँ पीले रंग में बदल गयी, लेकिन वह सारा उन्हें अब तक पकड़ी हुई थी। अब वह बूढ़ा हो गया था और झुक गया था, और वह एक भयानक आकार में था, और सारा का गर्भ लगभग मर गया था, और वो जीवाणुहीन हो गया था। यह क्या ही अवस्था में थे? उसके नामधारी विश्वासी मित्रों ने उससे कहा होगा, मेरे अब्राहम तुम कैसा महसूस करते हो? राष्ट्रों के पिता, अच्छा, प्रभु की महिमा हो, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, कुछ भी हो, हमें वो बालक होने जा रहा है। क्योंकि वो अविश्वास में से होते हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर लड़खड़ाया नहीं था, लेकिन मजबूत होता गया परमेश्वर को स्तुति देते हुए, क्योंकि वो पूरी तरह से मानता था कि जो परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर इसे करने में सक्षम है। आमीन। वहाँ पर एक विश्वासी के विशिष्ट गुण हैं। आपके बारे में क्या है? देखा, हमारे बारे में क्या है जो अब्राहम की संतान है? क्या हम एक प्रतिज्ञा की नाई परमेश्वर के वचन के साथ पहचाने गए हैं और हमारे विशिष्ट गुण हमारे खुद की पहचान देते हैं कि असल में हम इसे विश्वास करते हैं? या क्या आप ऐसे ही हाँ या ना करते हैं, यहाँ से कूदते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उधर जाते हैं और सोचते रहते हैं और ऐसे ही हाँ या ना करते हुए इसके बारे में इधर उधर की सोचते हैं? तब हम मसीह है ही नहीं, हम विश्वास करने का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन जब हम उस प्रतिज्ञा पर सचमुच खड़े रहते हैं, ठीक वहाँ पर बने रहते हैं जैसे अब्राहम ने किया। अब हम देखते हैं उसने तीन मनुष्यों को उसकी ओर चलकर आते हुए देखा। बाइबल यहाँ कहता है यह दिन की गर्मी का समय था, यह जरूर दोपहर का समय रहा होगा। वो मनुष्य चलकर आया और उससे बातें कर रहा था। हम समझते हैं कि उनमें से दो जन सदोम के अंदर चले गए थे। मैं सोचता हूँ कि हमने इस बात पर एक रात को बताया था, उसमें से एक उसके साथ रुका था। इस मनुष्य की ओर देखना जिसे उसने बुलाया, जो उसके साथ रुका था, उस मनुष्य ने जो किया एक उसके विशिष्ट गुणों के द्वारा पहचाना गया था कि वो एलोहिम था। एलोहिम बाइबल का वही पहला शब्द था, आदि में परमेश्वर था। अब आप में से कोई भी बाइबल शिक्षक जानते होंगे कि वो वहाँ उस शब्द का परमेश्वर का मतलब इब्रानियों में एलोहिम होता है, जिसका मतलब होता है वह सर्वशक्तिमान, पूर्ण रूप से स्वयं अस्तित्व में रहने वाला, जिसे किसी की भी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के भी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, वो अपना अनुवाद स्वयं करता है। वह पूर्ण रूप से परमेश्वर है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, वो परमेश्वर है। वो वहाँ पर था और अब्राहम, अब वो धर्म प्रधान जिसने उस वचन को थामा था, इस मनुष्य की ओर देखा। और जब उस व्यक्ति ने अपनी पीठ को उस तंबू से मोड़ लिया था, उसने कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कहा, वो आपके पीछे तंबू में है। कहा, मैं तुमसे जीवन के समय के अनुसार मुलाकात करूंगा और तुम्हारे पास यह बालक होगा जिसकी मैंने तुम्हें प्रतिज्ञा की है। और सारा इस पर हंसी और वो एक जो उससे बातें कर रहा था उसने बताया कि सारा ने तंबू में क्या किया जो उसके पीछे तंबू में थी। अब उत्पत्ति में आप इसे पढ़ना, तब हम पाते हैं अब्राहम इस मनुष्य के अपनी खुद की पहचान देने के बाद यह क्या था। इब्रानियों 4 उसका अध्याय 12 में कहता है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से चोखा है, जो विचारों को जांचने वाला है और हृदय की भावनाओं को परखता है। वह जानता था कि यही वो मनुष्य था। वह जानता था वहाँ उस देश में उसे छोड़ कोई भी नबी नहीं है, और इसलिए प्रभु का वचन उसके पास आया था और वो नबी था। और यहाँ वचन नबी के पास आता है। वही बात योना बपतिस्मा देने वाले के साथ थी। वहाँ पर 400 वर्षों से लेकर कोई भी नबी नहीं रहा था। मुझे याद है, हो सकता है वे बूढ़े डॉक्टर डेविड आज रात यहाँ बैठे हों, जो पुराने मिशनरी बैप्टिस्ट प्रचारक हैं, जिन्होंने मुझे विश्वास में बपतिस्मा दिया था। वे हमेशा ही मुझसे वाद विवाद किया करते थे। उन्होंने कहा, बिल्ली, तुम बस एक छोटे से बच्चे ही हो, तुम्हें मुझसे सुनना चाहिए। मैंने कहा, तो अच्छी बात है भाई डेविड, मैं सुन रहा हूँ। उसने कहा, तुम देखो कि योना ने बपतिस्मा नहीं लिया था, तो वो बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन उसने बपतिस्मा नहीं लिया था। कोई भी उसे बपतिस्मा देने के योग्य नहीं था। यह बहुत ही अच्छी बैप्टिस्ट की शिक्षा है। और यहाँ पर यीशु आता है और तब उसने कहा, योना ने कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास क्यों आया है? और उसने कहा, अब तो इसे ऐसा ही होने दे। डॉक्टर डेविड ने कहा, और फिर जब उसने वैसा ही किया, कहा, तुम देखना, यीशु ने योना को बपतिस्मा दिया, और जब वो पानी में से बाहर आया, तब आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर को एक पिंडुक की नाई नीचे उतरते हुए देखा और उस पर जाते हुए देखा। कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसके अंदर रहने से मैं अति प्रसन्न हूँ। लेकिन नहीं, मैं डॉक्टर डेविड के साथ असहमत नहीं हो रहा हूँ, लेकिन वे गलत थे। देखो, योना नबी था और वचन हमेशा ही नबी के पास आता है। इसलिए यदि वचन देदारी हुआ था, कुछ भी हो, इसे नबी के पास आना था, क्योंकि वो वचन के लिए बता रहा था और उसके उसी विशिष्ट गुण ने उसकी पहचान दी थी। यहाँ पर वचन आता है। अब क्या घटित हुआ था? जैसे कि वो यीशु के सामने चलकर आया, योना ने कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास क्यों आया है? यीशु ने कहा, अब तो इसे ऐसा ही होने दे, हमारी योग्यता ऐसा करने से सारी धार्मिकता को पूरा करते हैं। योना नबी होने के नाते और वो वचन होने के नाते वो बलिदान था, और वह उसकी धरती की सेवकाई के लिए प्रवेश करने को तैयार था, और बलिदान चढ़ाने से पहले उसे धोया जाना है, इससे पहले उसे चढ़ाया जाए। और यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया क्योंकि वह जान गया था अब तो इसे ऐसा ही होना है, क्योंकि यह हमारे लिए इसी तरह से होना है कि सारी धार्मिकता को पूरा करे। बलिदान चढ़ाने से पहले उसे धोया जाना था इससे पहले कि उसे चढ़ाया जाए, और इसलिए यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया। यह ऐसा नहीं था कि यीशु ने यूहन्ना को बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया था, अब इसे ऐसा ही होना था। ध्यान देना, यह अब्राहम था और उसके पास प्रभु का वचन था, प्रभु का वचन उसके पास आया था, वो नबी था, और अब यह वचन आता है। उसने उसे बुलाया अब्राहम, न कि अब्राम। कुछ दिनों पहले उसका नाम अब्राम था, अब यह अब्राहम हो गया था। उसकी पत्नी का नाम सारे था, अब सारा हो गया था, न ही SARRA लेकिन SARAH, न ही ABRAM अब्राम लेकिन ABRAHAM अब्राहम। और इस मनुष्य ने खुद की पहचान दी जब उसने कहा अब्राहम, ओ प्रभु। अब्राहम ने कहा एलोहिम, वहाँ पर वचन और नबी एक साथ है, दोनों गुणों ने पहचान दी थी। एलोहिम, उसने कहा तेरी पत्नी सारा कहाँ पर है? कहा वो आपके पीछे तंबू में है। और तब चमत्कार हुआ था। एलोहिम, अब्राहम ने उसे बुलाया सर्व रूप से सर्व सामर्थी परमेश्वर। यीशु ने कहा जब वो धरती पर था उसने उन्हीं कामों को किया जो एलोहिम ने किए थे, जिसने एक परमेश्वर होने के नाते उसके विशिष्ट गुणों की पहचान दी। और उसने पहले कहा था अंतिम दिनों में मनुष्य के पुत्र के आने पर जब वो प्रकट होता है, यह बात फिर से जगह लेगी जैसे ये सदोम पर हुआ था। एलोहिम उसके लोगों के बीच में है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यही वचन कहता है एलोहिम लोगों के बीच में है, क्योंकि 40 वर्षों से वो हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे रहा है। एलोहिम परमेश्वर और वो कलीसिया, देखो अब्राहम ने एक चिन्ह को देखा था, एक और बुलावट, एक चिन्ह, एक बुलावट, एक बुलावट, एक चिन्ह जो उस प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के लिए रुका हुआ था। लेकिन वो अंतिम चिन्ह जिसे उसने देखा, उसकी अंतिम उपस्थिति, परमेश्वर का अंतिम बार भेंट करना, इससे पहले वो प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र दृश्य पर आए जो मानवीय देह में एलोहिम था, तब वो प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र आ गया। और अब्राहम का बीज प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के लिए रुका हुआ है जो यीशु मसीह है, और उन्होंने चिन्हों को देखा है, पवित्र आत्मा को ओंढेला जाना, अन्य भाषा में बोलना, दैविक चंगाई और इत्यादि। लेकिन जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ था, एलोहिम अब्राहम के शाही वंश के पास वापस लौट आएगा और वह उन्हीं बातों को दिखाएगा जिसे उसने उस दिन में दिखाई थी। आमीन। एलोहिम जैसे वो था, क्यों? यह परमेश्वर के विशिष्ट गुण होंगे। अब यदि मसीह परमेश्वर था, थोड़ी देर रह गई है और इस संसार मुझे न देखेगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक जगत के अंत तक तुम्हारे अंदर रहूंगा। जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, यीशु ने लूका 17वां अध्याय में कहा। तो ठीक है, जब हम विश्वास करते हैं और इन अंतिम दिनों में देखते हैं, इस समयोजन को फिर से प्रतिक्रिया में आना है। इसलिए इब्रानियों 1:1 में परमेश्वर ने विभिन्न समय पर नबियों के द्वारा अपनी पहचान दी, इन अंतिम दिनों में उसके पुत्र के मरे हुए में से पुनरुत्थान के द्वारा पहचान दी है कलीसिया को उसी विशिष्ट गुण के द्वारा जो उसके पास थे, जो इब्रानियों 13:8 को बिल्कुल सही रीति से बना रहा है। कोई भी पंख को इसमें से खींचकर नहीं निकाल सकते हैं, यह उकाब के पंख हैं, वे मजबूत बने रहते हैं क्योंकि वे स्वर्ग के पक्षी हैं, वे उन्हें उकाब का भोजन खिलाते हैं। अब हम ध्यान देते हैं, परमेश्वर ने विभिन्न समय पर भिन्न भिन्न तरीकों से उसने पिताओं से बातें की, इन अंतिम दिनों में उसके पुत्र यीशु मसीह के जरिए से उसके मरे हुए में से जी उठने के द्वारा बातें करता है, और वो यहाँ हमारे बीच में 2000 वर्षों के बाद है, वही यीशु, न ही उन नबियों में से एक यीशु, हालेलुया, जो परमेश्वर का पुनरुत्थित पुत्र है। यीशु ने एक दिन कहा, उसने कहा एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी एक चिन्ह के लिए देखेगी और उन्हें एक चिन्ह दिया जाएगा। एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी, संसार कब इतना ज्यादा एक दुष्ट और व्यभिचारी और दूषित हुआ है, इसकी तुलना में वो अब है, जैसे ये योना के दिनों में था जब योना 3 दिन और रात के लिए उस व्हेल मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को 3 दिन और रात धरती के हृदय में होना ही होगा। तब एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी को एक चिन्ह मिलना था। किस प्रकार का एक चिन्ह? एक पुनरुत्थान का चिन्ह, और यह चिन्ह आज हमारे पास है 2000 वर्षों के बाद। वह अब भी जीवित है, वह आज रात हमारे बीच में है, वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, जो परमेश्वर के विशिष्ट गुणों के द्वारा अपनी पहचान को दे रहा है, इस दिन में वचन को प्रमाणित कर रहा है जिसकी उसने करने की प्रतिज्ञा की थी। आमीन। वहाँ पर वचन है। अब क्या आप चिन्ह पर विश्वास करेंगे? अंतिम दिनों में जो अगली चीज है, उसके पुत्र के द्वारा उसकी पहचान देना। ध्यान देना, परमेश्वर ने विभिन्न समय पर मूसा से बातें की थी। व्यवस्था विवरण 18:15 कहता है, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरे समान एक नबी को खड़ा करेगा। अब ध्यान देना, यही वो वचन है, यह वो वचन है, यह वो परमेश्वर था, यह मूसा नहीं था। मूसा ने इसे कैसे जाना? वह तो एक मनुष्य था, लेकिन यह परमेश्वर मूसा के जरिए से बातें कर रहा था, इसे बताया। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? तो ठीक है। अब ध्यान दें, यीशु कैसे उसके विशिष्ट गुणों ने इन प्रतिज्ञा किए हुए वचन के सच्चे होने की पहचान दी। निश्चय ही उसने किया था, वह इस विशिष्ट गुणों के द्वारा पहचाना गया था जिसे मूसा ने बताया था कि वो करेगा। उनमें से बहुत, जैसे कि आज वे कुछ बड़े अगुवाई करने वाले लोगों को देखना चाहते हैं, ओ वो डॉक्टर पीएच है, फलाना फलाना है, वह हार्टफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकला है, या वो इसी तरह से किसी बड़े कहीं से तो बाहर आया है, वहाँ पर कोई भी परमेश्वर की पहचान नहीं है। नहीं नहीं, इसके बारे में एक बात भी नहीं है, वचन ही है जो परमेश्वर की पहचान देता है। समझे? यीशु पढ़ा लिखा नहीं था, न ही वो एक याजक था, न ही वह संसार के लिए एक रब्बी था, वह संसार के लिए एक स्वधर्म का त्यागी था। लेकिन परमेश्वर उसके जरिए से वचन को साबित कर रहा था, जिसने उसे इमैनुअल बना दिया, जो उसकी पहचान थी। अब यहाँ पर यीशु बिल्कुल उसी बात से मिल रहा है जो परमेश्वर ने विभिन्न समय में बताया कि वो करेगा, मूसा के जरिए से कहा जो वो करेगा। अब ध्यान देना, जब उसने पतरस से मुलाकात की, जैसे हमने एक रात को उसका नाटकीय रूप में करके बताया था, जब उसने पतरस से मुलाकात की और पतरस को बताया कि उसका नाम क्या था, इस चिन्ह ने पतरस के लिए उसके मसीहत के दावे की पहचान दी, क्योंकि वचन ने कहा था प्रभु तुम्हारा परमेश्वर एक नबी को खड़ा करेगा। और पतरस आता है, जो तब शिमोन का पुत्र था, वहाँ पर आ गया जहाँ पर वो था, और यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा तुम्हारा नाम शिमोन है और तुम योना के पुत्र हो। मसीह के गुण को वचन होने की पहचान को देते हैं जिसकी मूसा ने प्रतिज्ञा की थी। पतरस ने जान लिया कि उस चिन्ह ने यीशु के मसीह की नई पहचान दी है। परमेश्वर मसीह में था, जो अंतिम दिनों के लिए अभिषेक है। नतनेल के लिए याद रखना, उसने शिमोन को उसका नाम बताया। अब देखो, नतनेल को उसने बताया कि उसने क्या किया था, जब तुम उस पेड़ के नीचे थे मैंने तुम्हें देखा था, जिसने उसके मसीह होने की पहचान दी। कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का राजा है, वह प्रतिज्ञा किए हुए वचन के विशिष्ट गुणों के द्वारा पहचाना गया था, जिसे वो मसीहा होना था। प्रभु तुम्हारा परमेश्वर एक नबी को खड़ा करेगा। वो छोटी स्त्री जो कुएं पर थी, उसने उसे बताया कि वो कौन थी, और जिसने उसकी इस प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा की नई पहचान दी। देखा, उसका गुण, उसके विशिष्ट गुण जो पहचाने हुए वचन थे, जो उसके विशिष्ट गुणों को दिखा रहे थे कि वो वचन परमेश्वर था, इसलिए यह परमेश्वर था जिसने मसीह में होने की पहचान दी थी। अब इसे देखना, ध्यान दें, पतरस के लिए वो उसके नाम को पुकारने के द्वारा पहचाना गया था, वो नतनेल को यह बताने के द्वारा पहचान दी थी कि उसने क्या किया है, उसने उस स्त्री को यह बताने के द्वारा पहचाना गया था कि वो क्या थी, वो कौन था, उसने क्या किया है, और वह क्या थी, वो उसके मसीहत के विशिष्ट गुणों के द्वारा पहचाना गया था, जो मसीहा के विशिष्ट गुण होने थे। उस छोटी स्त्री की ओर देखें, वो उसी बात को कहती है, श्रीमान मैं ये मान लेती हूँ कि तू एक नबी है। हमारे पास सैकड़ों वर्षों से कोई भी नबी नहीं हुआ था, हमारे पास बहुत सारी कलीसियाएं हुई हैं, बहुत सारे वाद विवाद और संस्थाओं की विभिन्नताएं हैं, लेकिन हमारे पास सैकड़ों वर्षों से एक भी नबी नहीं हुआ है। हम यह जानते हैं कि जब मसीह आएगा, यही है जो उसकी पहचान को देगा। उसने कहा मैं वो हूँ जो तुझसे बोल रहा है, इसके बारे में कोई भी अस्पष्ट आवाज नहीं है, मैं वो हूँ जिसने उसकी पहचान दी। वह स्त्री जो लहू की बीमारी के साथ थी, उसके वचन होने की पहचान दी। कैसे? जो उसने किया था, जब उसके विश्वास ने उसे छुआ था, उसने पीछे मुड़कर और कहा, किसने मुझे छुआ? वह जान गया कि कुछ तो हुआ है जिसने मसीहा की नाई यीशु की पहचान दी। स्त्री ने इसका विश्वास किया और कहा, यदि मैं उसके वस्त्र को छू सकती हूँ मैं चंगी हो जाऊंगी। इसलिए जैसे ही उसने वस्त्र को छुआ उसने मुड़कर कहा, अब किसने मुझे छुआ है? और सब लोगों ने इसका इनकार किया, लेकिन उसकी मसीहत के विशिष्ट गुण। आमीन। मैं आशा करता हूँ आप श्रोतागण इसे देखते हैं। सुनना, जब हम बंद कर रहे हैं, वहाँ पर स्त्री ने उसे छुआ, वहाँ पर सैकड़ों लोग थे, हो सकता है जो उसे छूने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ तक पतरस ने उसे झिड़का, कहा, ठीक है, उनमें से हर एक कोई तुझे छू रहा है। उसने कहा, हाँ, लेकिन किसी ने मुझे अलग ही तरीके से छुआ है। यही वो अलग बात है जो विश्वास का छूना है, समझे? कहा, किसी ने मुझे छुआ है, यह अलग ही छूना है। मैं कमजोर हुआ हूँ, मुझमें से सामर्थ निकली है, मुझमें से सद्गुण निकली है। अब वहाँ पर यह खड़ा हुआ है। अब यहाँ तक उनके अपने चेलों ने कहा, दूसरे शब्दों में तू ऐसे बात कर रहा है जैसे तू कुछ अलग अपराधी व्यक्ति है, इसलिए लोग हर कोई तुझे छू रहा है। अब इसे देखना, अब उसकी पहचान को देखना। उसने पीछे मुड़कर भीड़ में से होते हुए देखा, वो उससे ठीक एक तरफ बाहर निकल गई थी। वो स्त्री अपने आप को अधिक छिपा न सकी। उसने उसे उसकी परिस्थिति को बताया और कहा, उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया है। वह इसके द्वारा जान गई, वहाँ इब्रानियों 4:12 में वचन मनों को जांचता है और हृदय को परखता है। उसके विशिष्ट गुण ने उसकी ये होने की पहचान दी थी कि वो परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ था और हमारे बीच में रहा। आमीन। मैं सोचता हूँ आज रात वही बात उसकी पहचान दे रही है। वो पुनरुत्थित यीशु मसीह आज रात हमारे बीच में जीवित है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अब जैसे इब्रानियों 13:8 सत्य है, उसका गुण आज उसकी पहचान को देगा, वैसे ही जैसे उसने तब दी थी। पुनरुत्थान के बाद क्लोपास और उनकी ओर देखना, यीशु ने अपनी पहचान दी जिस तरीके से उसने रोटी को तोड़ा, जैसे उसने उसके क्रूस पर जाने से पहले उसी तरीके से किया था। और उन्होंने इसने इसके विशिष्ट गुणों की पहचान दी क्योंकि इसी तरीके से उसने इसे किया था। अब यदि वो आज रात यहाँ पर होता तो वो कैसे अपनी पहचान को देता? बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बीते कल को किया था, क्योंकि वह आज भी वैसा ही है और वो हमेशा ही रहेगा। यही वो पहचान है। इब्रानियों 4:14-15, वो अभी है, कहता है, वो हमारा महायाजक है जिसे हमारी निर्बलता के अनुभव के द्वारा छुआ जा सकता है। वह ठीक अभी हमारा महायाजक है। उसके पुनरुत्थान के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, उसके दफनाए जाने के बाद, उसके पुनरुत्थान के बाद, उसके अधिरोहण के बाद, आमीन, वो अब भी कल, आज और युगानुयुग बना रहता है। एक महायाजक जिसे हमारी निर्बलता के अनुभव के द्वारा छुआ जा सकता है। आमीन। वही है वो, ठीक अभी हर एक पुरुष और स्त्री के लिए जो यहाँ पर है, जो इसे विश्वास करेंगे, वो हमारा महायाजक है। कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह हमेशा ही जीवित है। आप ये विश्वास करते हैं? उसके विशिष्ट गुण निरंतर उसकी पहचान देते हैं, जैसे कि वो था जब वो धरती पर था, वो अभी भी यहाँ पर आज रात पवित्र आत्मा के रूप में जीवित है। वह हमेशा ही जीवित है और उसके विशिष्ट गुण उसका अनुकरण करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इसने हमेशा किया है, यदि वो अब भी जीवित है। मैं आज रात आभारी हूँ कि परमेश्वर विभिन्न समयों में भिन्न भिन्न जरिए से नबियों के द्वारा पिताओं से बातें की, अंतिम दिनों में उसके पुत्र यीशु मसीह के जरिए से बातें करता है। ओह, मैं नहीं जानता, मैंने लंबे समय तक बात किया है, मैं इसके बारे में भूल गया, इसे इसी तरह से होना है, मुझे क्षमा करें, मैं बंद करूंगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, महान दयालु परमेश्वर, प्रभु, मैं हो सकता है मैंने बहुत ही ज्यादा बात की है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, यदि मैंने की है आप मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन प्रभु मैं उसके लिए क्षमा नहीं मांग सकता हूँ जो मैंने कहा है। मैंने बिल्कुल वही कहा है जो आपने यहाँ बिल्कुल अपने वचन में कहा है। अब कुछ दो या तीन शब्द आपसे प्रभु, हो सकता है हर एक जन यह आज रात से देखेंगे, वह कुछ बीमार लोग चंगे हो जाएंगे जब वे देखेंगे कि आप अब भी हमारे महान महायाजक हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अगले कुछ मिनटों में कि आप इस संदेश को फिर से वास्तविक बनाएंगे जिसे मैंने वचन के द्वारा कहा है होने पाए। आज रात आपका विशिष्ट गुण हमारे बीच में आपकी पहचान को दे कि आप कल, आज और युगानुयुग एक सा है, क्योंकि इसे हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब कुछ क्षणों के लिए मैंने थोड़ा देर कर दी है, लेकिन आप क्या प्रार्थना की पंक्ति के लिए थोड़ा सा धीरज धरेंगे कुछ 15 या 20 मिनट के लिए? यदि आप करेंगे तो अपने हाथों को ऊपर करें और कहें हम करेंगे तो ठीक है। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आपको 9:30 बजे तक छोड़ने का वायदा करता हूँ। अब समय हुआ है, 20 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए यदि आप मुझे लगभग 10 मिनट देंगे मैं इसे जल्दी ही करूँगा। आइए देखेंगे आज उन्होंने कौन से प्रार्थना के कार्ड को दिया है। ओ क्या हमने उस रात को कहाँ से आरंभ किया था? एक से। जी हाँ हाँ हाँ। और फिर हमने पिछली रात को हम केवल पवित्र आत्मा, मैं आज सुन रहा था और उसे दोहरा रहा था जो कहा गया है, उनमें से कुछ फ्रेंच नाम है। मैं पवित्र आत्मा, मैं केवल एक ही तरीके से इसे बता सकता हूँ, केवल रुक रुक कर और देखें। देखो जब आप एक दर्शन को देखते हैं, इसे वापस मुड़कर और अनुवाद होना है, इसका तजुर्मा होना है। एक दर्शन जैसे आप एक भेड़ को देखते हैं जिसका मतलब होता है ऊन। देखो आपके पास करने के लिए इसका अनुवाद भी होना है और दर्शन को घुमाकर और इसका अनुवाद करें। और मैंने पिछली रात्रि को ध्यान दिया, मैं उन फ्रेंच नामों को सही उच्चारण नहीं कर पाया, मुझे इसको शब्द विलांस करने के बताना था। अफ्रीका में और हर कहीं वे होटेटोन और गैर ईसाई इत्यादि, उन्हें उनका नाम ठीक तरह से लेने के लिए शब्द विलांस अलग अलग करके बोलना पड़ता है, उन्हें बताना होता है कि वह कौन थे। उनकी भाषा में शब्द विलांस अलग अलग करना होता है। जैसे ही आप उनका शब्द विलांस अलग अलग करके बताते हैं, वे जान जाते हैं कि वे क्या था। लेकिन देखो, लेकिन वो सारी भाषाओं को जानता है, वो अनंत परमेश्वर है। आइए आज रात हम वहाँ से आरंभ करेंगे। आइए देखेंगे 75 से लेकर 100 तक ओ में, ये ओ ही है जो भाई ने कहा था। मैं ओ ओ, जी हाँ, तो ठीक है। किसके पास 75 संख्या का कार्ड है? आइए देखेंगे ओ में प्रार्थना कार्ड। ओ 75, अपने हाथ को ऊपर उठाएं जिसके पास है। ओ तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएं। 75, 80, 85, 90, 95, 100, इस तरफ आ जाएं यदि आप चाहते हैं तो ठीक है। या ठीक यहाँ पर से कतार को लगाएंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मैं अब भरोसा करता हूँ कि आप इसे जल्दी करेंगे। अपने प्रार्थना कार्ड को देखें, अपने पास के खड़े व्यक्ति के प्रार्थना कार्ड को देखें क्या, और यदि कोई अपाइज है तो उन्हें ठीक यहाँ पर प्रार्थना की कतार में लेकर आएं। यदि उनके पास वह ओ कार्ड है, जैसे कि ओ 75 से लेकर 100 तक, ठीक यहाँ पर कतार को लगाएं यदि आप चाहते हैं तो आप जहाँ कहीं भी हैं बालकनी में और जहाँ भी और भी हैं, ठीक यहाँ नीचे आ जाएं और जितना जल्दी संभव हो सके कतार में आ जाएं। यदि आप करेंगे तो इससे समय बचता है। अब यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं जिनके पास प्रार्थना का कार्ड नहीं है, क्या आप अपने हाथों को उठाकर और कहेंगे हमारे पास प्रार्थना का कार्ड नहीं है भाई ब्रैनम, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। अपने हाथों को उठाएं। अब याद रखना, मैं आपसे महायाजक के बारे में बोलने जा रहा हूँ। वो एक महायाजक है जिसे हमारी निर्बलताओं के अनुभव के द्वारा छुआ जा सकता है। वह यहोवा यीरे है, वह प्रभु का प्रयोजन किया हुआ बलिदान है। वह यहोवा राफा है, वह प्रभु जो तेरी सारी बीमारियों से चंगा करता है। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? वो यहोवा मनश्शे है, एक ढाल, एक रक्षक, हमारी शांति, वह अभी भी ऐसा ही है। तो ठीक है, कितने लोग विश्वास करते हैं कि वे सारे यहोवा के छुटकारे के नाम यीशु पर लगाए गए थे? निश्चय ही उसे लगाया जाना था। यदि वो अलग नहीं होते हैं, इसलिए उसके पास वे सारे नाम होने थे। और यदि वो अभी भी यहोवा यीरे है, वो यहोवा राफा है। यदि वो यहोवा यीरे है, वो यहोवा यीरे है, वो प्रभु का प्रयोजन किया हुआ उद्धार के लिए बलिदान है। वह यहोवा राफा है, वह प्रभु जो हमारी सारी बीमारियों से चंगा करता है। आमीन। चंगाई केवल परमेश्वर से ही आ सकती है। तो ठीक है, जबकि लोग कतार पर आ गए हैं, मेरे पास ये देखने के लिए समय नहीं है कि वे कौन हैं और वे क्या हैं, लेकिन अब वहाँ पर वे सारे जो जानते हैं कि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, अपने हाथ को उठाकर कहें मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। लेकिन आप मुझे नहीं जानते हैं भाई ब्रैनम, लेकिन मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। मैं केवल अपने हाथों को ऊपर उठाऊंगा। अब यदि आप कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही स्थिर रहें, ध्यान दें और सावधान रहें और शांत बने रहें। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि जब मैं कहता हूँ कि शांति बने रहें, यदि प्रभु कुछ भी करता है आप उसकी स्तुति करना चाहते हैं, यही वो आराधना होती है। लेकिन मेरा मतलब यह है, यहाँ वहाँ न जाएं और बस खड़े हो जाएं। आप जानते हैं यह अनादर करना है, समझे? और पवित्र आत्मा बहुत ही संकोचशील है, बहुत ही संकोचशील, समझे? बस इसी तरह से कुछ होता है, यह मुझे छोड़ देता है और देखो फिर से मेरे पास एक लड़ाई होती है। लेकिन यदि आप सुनेंगे, क्या आपको उसकी पहली प्रतिज्ञा याद है? जाकर लोगों को खुद पर विश्वास करने को लगाओ और फिर ईमानदार बने रहो, कोई भी प्रार्थना के आगे खड़ा न होगा। क्या आपको याद है? यह सही है और यही मैंने अब तक इसे कभी भी चूकते हुए नहीं देखा है और यह कभी नहीं चूकेगा। यह परमेश्वर है। अब हम प्रार्थना की पंक्ति के लिए जल्दी करेंगे, जिससे कि हम जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा करेंगे लोगों को देखते हुए। लेकिन आप जिनके पास प्रार्थना के कार्ड हैं और जिन्हें आज रात को नहीं बुलाया गया, अपने कार्ड को पकड़े रहें, हम आप तक पहुंचेंगे, यह ठीक है। अब याद रखें, आप जो बाहर बिना प्रार्थना के कार्ड के साथ हैं या आप जो बाहर हैं, आपके पास प्रार्थना का कार्ड हो या नहीं हो, केवल विश्वास करें कि वो इब्रानियों 4 अध्याय के नाई यहाँ पर है। वो महायाजक है जिसे हमारी दुर्बलताओं के अनुभव के द्वारा छुआ जा सकता है। देखो, यदि वो ऐसा ही बना रहता है, यदि वो यहोवा उसके लोगों के बीच में खुद को प्रतिनिधित्व कर चुका है जैसे उसने सदोम के दिनों में किया था, तो ठीक है श्रीमान। अब आइए हम प्रार्थना करेंगे, वास्तव में उसे आदर देंगे। अब याद रखना, एक शब्द जो परमेश्वर से आता है वह किसी के भी कुछ भी कहने से बढ़कर हो सकता है। अब यह व्यक्ति जो यहाँ पर है, मैं उसे नहीं जानता हूँ और मैं सोचता हूँ वो आप मेरे लिए एक अजनबी हैं। क्या आप हैं श्रीमान? आप एक अजनबी हैं। हम एक बात को जानते हैं, हमें किसी दिन प्रभु की उपस्थिति में दोनों को खड़े रहना है। मनुष्य की नाई, हमें वहाँ पर मुलाकात करना है। यह हमारी पहली बार मुलाकात है। अब यदि आप यहाँ पर आए हैं तो आप बीमार होंगे, मैं नहीं जानता। देखो, यह कुछ और हो सकता है, लेकिन यदि मैं आपके ऊपर हाथ को रखता हूँ और कहता हूँ प्रभु की स्तुति हो, जाओ आप चंगे हो गए हैं, तो यह ठीक बात है, आप इसका विश्वास कर सकते हैं। लेकिन क्या हो यदि वो आपको बताता है कि आपके साथ क्या गलत है? अब देखो, यही फर्क है, तब आप जान जाते हैं कि ये उसके विशिष्ट गुण की पहचान को देते हैं। देखो, ये मेरे विशिष्ट गुण नहीं होंगे, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकता हूँ। मैं केवल उसे कह सकता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, वह मुझे नहीं जानता है। लेकिन यह क्या करेगा? वह यीशु मसीह के विशिष्ट गुणों की पहचान को देगा। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यह जानते हुए कि यह मैं नहीं हो सकता हूँ, यह मैं नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, मैं अपने हाथों को उठाऊंगा, यहाँ पर वो वचन है, देखा, मैं उसे नहीं जानता हूँ, वह मुझे नहीं जानता है, लेकिन यीशु मसीह के विशिष्ट गुण। यदि यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा होता था तो, और वह व्यक्ति बीमार है, वह यदि कहता प्रभु यीशु मुझे चंगा कर, यीशु उसके लिए क्या कहता? मैंने इसे पहले ही कर दिया है। क्या यह सही है? वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए थे। वो सारा छुटकारा जो हमारे पास हो सकता था, उसे कैलवरी पर पूरा कर दिया है। तब से लेकर यही विश्वास है कि उसके समाप्त हुए काम को विश्वास करें। क्या यह सही है? तो ठीक है। अब यदि यीशु मसीह अब जीवित है और मैंने उसके वचन को बताया है, वहाँ पर आप हैं, वापस उस साधारणता और विश्वास में जाना, उसके वचन पर विश्वास करते हुए। जब उसने मुझसे उस रात को मुलाकात की, उसने कहा तुम ऐसा करोगे कि यहाँ तक तुम उनके हृदय की गुप्त बातों को जानोगे। वे उस हाथ के पहले चिन्ह को विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें इस एक पर विश्वास करना होगा। देखा, वो ऐसा नहीं करते हैं, तब लहू धरती को श्रापित करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने मूसा के समय में किया। कहा उनके दो चिन्हों को विश्वास नहीं करते हैं, तब धरती पर लहू को ऊंडेल दो। देखो, धरती पर जल को ऊंडेलो, यह लहू बन जाएगा। अब केवल इसे देखने के लिए, यदि केवल मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी परेशानी क्या है जो तुम्हें संतुष्ट करेगी और विश्वास करने को लगाएगी, क्या यह ऐसा नहीं है? आप जानते हैं, यह उस व्यक्ति के विशिष्ट गुण होने हैं जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, वह यीशु मसीह है। वह व्यक्ति जैसे मैंने उसकी ओर अभी देखा है, पीछे जाते हुए वह छाया किए हुए है, वहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो दवाई उस मनुष्य की सहायता करे, वह एक मरने की अवस्था में है, यह सही बात है। उसका एक ऑपरेशन हो चुका है और वह ऑपरेशन प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन था, और वह कैंसर है, और ये कैंसर पूरी तरह से तुम में फैल चुका है, और यदि यह सही है तो अपने हाथ को ऊपर उठाएं, केवल परमेश्वर ही उसे चंगाई दे सकता है। लेकिन देखो, मैं आपसे कुछ तो कहना चाहता हूँ श्रीमान, हो सकता है वो शैतान ने डॉक्टर की छुरी से इसे छिपा कर रखा हो, लेकिन वो परमेश्वर से नहीं छिपा सकता है। क्या आप यह विश्वास करते हैं? क्या आप इसे विश्वास करते हैं? तब मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में होने पाए वो चीज उसे छोड़कर चली जाए, होने पाए वो मनुष्य जीने लगे। कुछ नहीं, केवल कमजोरी है, तो ठीक है। आप और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, जैसे एक पुरुष और एक स्त्री मुलाकात करते हैं। अब एक मनुष्य होने की नाई, मैं आपको नहीं जानता हूँ, और हो सकता है एक महिला होने की नाई, तुम मुझे नहीं जानती हो, और ज्यादा कुछ नहीं, तुमने मेरे नाम को सुना है या तस्वीर को देखा है या इसी तरह से कुछ, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। यही हमारे गुण हैं, हम एक दूसरे के गुणों को नहीं जानते हैं। लेकिन मसीह के विशिष्ट गुण वो वचन है, और वचन इस दिन के लिए प्रतिज्ञा है, आपने मुझे इसे कहते हुए सुना है। तब उसके विशिष्ट गुण यहाँ उसकी पहचान को देंगे। मैं उसकी पहचान को नहीं देता हूँ, मैं आपको नहीं जानता, आप समझते हैं, हमारे सभा के लोग यह समझते हैं, देखा मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं केवल तुम्हारा भाई हूँ। जैसे कुएं पर वो स्त्री थी, उसे बताया कि क्या गलत है, कुछ तो तुम्हारे साथ गलत है, या तुम क्या चाहती हो, या तुम यहाँ पर क्यों हो, परमेश्वर इसका न्याय करे। तुम रक्तहीनता की अवस्था से गुजर रही हो, क्या यह सही है, क्या ऐसा नहीं है? मैं निरंतर उस पर देखता हूँ। कोई तो सोच रहा है कि मैंने अनुमान लगाया है, मैं इसे अनुमान ही लगाता हूँ, नहीं, हर समय हर एक बार मैं महसूस करता हूँ कि कोई तो ऐसा सोचता है। अब आप अपने विचारों को नहीं छिपा सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में मैं जानता हूँ। यहाँ पर दो गलत शंकाशील व्यक्ति बैठे हुए हैं, देखा, इसलिए अब याद रखना, मैं तुम्हारे नाम को भी बुला सकता हूँ, परमेश्वर बुला सकता है, इसलिए तुम इसे सोचना बंद करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यहाँ देखो महिला, मेरी ओर देखो। मैं नहीं जानता कि उसने तुम्हें क्या कहा है, लेकिन मैं जानता हूँ यह क्या है, और यही उसके विशिष्ट गुण पहचाने गए हैं। यह रक्तहीनता की अवस्था में है, वो लहू जल। अब यहाँ पर यहाँ कुछ तो है, देखो, यदि वे इसे सोचते हैं कि यह अनुमान लगाना है, तुम्हारा एक बालक है जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रही हो, जो यहाँ पर है, यह सही है, यह उसके गले में है, टॉन्सिल्स एडिनाइट, इसका ऑपरेशन होना है, क्या यह सही है? रुमाल को लेकर और उस पर रखना, और विश्वास करें, संदेह मत करना, इसकी एक ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, अपने पूरे हृदय से विश्वास करो। आप कैसी हैं? इस महिला की बात यह है, आप किसी बात से डर रही हैं, आप डरी हुई हैं कि आपका जो जन्म का चिन्ह है कि वो कैंसर में बदल गया है। अब जाओ, विश्वास करते रहो, और इस तरह से नहीं होगा, केवल जाकर अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। विशिष्ट गुण ना ही मेरे, उसके विशिष्ट गुण, क्या अब आप विश्वास करते हैं? यह हर किसी को विश्वास करने को लगाएगा। अब मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपके लिए एक अजनबी हूँ, परमेश्वर आपको जानता है, क्या आप इसे विश्वास करती हैं? आप ये जानती हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूँ और आप मुझे नहीं जानती, इसलिए क्या आप विश्वास करती हैं कि आत्मा जो बोल रहा है मेरा आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक मनुष्य होने के नाते मैं आपको नहीं जानता हूँ। लेकिन प्रतिज्ञा वचन के विशिष्ट गुण वो वचन है जो दो धारी तलवार के समान है, और हमारे विचारों को परखते हैं और हृदय की भावनाओं को जांचते हैं। आप बहुत ही बीमार हैं, आपके पास एक स्त्रियों की समस्या थी जो गर्भ में थी, और वह गर्भ में कैंसर था, और आपने जाकर एक तरह के इलाज को किया, और यह इलाज रेडियम का इलाज था, और केवल इसी जरिए से इसे किया जाना था, जिससे यह आप में फैल गया है, और आप मर जाएंगी यदि परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देता है, यही सत्य है। क्या अब आप विश्वास करती हैं? वो आपको चंगाई देगा, होने पाए वो स्वर्ग का परमेश्वर उस शैतान को डांटे जो उस डॉक्टर से छिपा हुआ था, वो हो सकता है उस रेडियम से छिपा हुआ होगा, लेकिन पवित्र आत्मा से नहीं छिप सकता है। जाओ अब उस पर विश्वास करो बहन, किसी प्रकार से शंका मत करना, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करना। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उस अस्थमा से चंगाई दे सकता है और आपको ठीक कर सकता है? आप इसे विश्वास करते हैं, तब आप अपने मार्ग पर आनंद करते हुए जाएं, कहते हुए धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा अस्थमा जा चुका है। आप कैसे हैं? आप परेशान हैं, आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं। वहाँ पर इसका कारण एक पाचक संबंधी अल्सर है जो आपके पेट पर आया है, जो आपको पेट की समस्या देता है, और आप चाहते हैं, आप अपने भोजन को खाना चाहते हैं, क्या वही करेंगे जो मैं आपको करने के लिए कहता हूँ? जाओ और खाओ प्रभु यीशु के नाम से। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? आप एक बहुत ही अच्छी युवा महिला दिखाई देती हैं। क्या आप मुझ पर उसका सेवक होने का विश्वास करती हैं? आप विश्वास करती हैं कि उसके विशिष्ट गुण भी यहाँ पर हो सकते हैं? वो स्वयं वचन इस दिन की जो प्रतिज्ञा है, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, मैं चंगाई नहीं दे सकता हूँ, उसने पहले से ही इसे कर दिया है, लेकिन उसके विशिष्ट गुण उसे प्रदर्शित करते हैं, बता सकते हैं कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। आपको एक स्त्री समस्या है, महिलाओं की समस्या है, क्या आप यह विश्वास करती हैं? परमेश्वर इसे ठीक अभी चंगा कर सकता है। अपने मार्ग पर जाओ, अब ये तुम्हें और अधिक चिंतित नहीं करेगा, अपने पूरे हृदय से विश्वास करो। क्या आप मुझे उसका सेवक होने का विश्वास करेंगी? यदि परमेश्वर मुझे बताएगा कि आपकी समस्या क्या है, तो क्या आप विश्वास करेंगी? यही यीशु मसीह के विशिष्ट गुण है, ये आपकी पीठ पर है, अब ये और नहीं होगा। जाओ अपने हृदय से विश्वास करो, विश्वास करो। आइए महिला, आपको भी पेट की समस्या है, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और जाकर अपने भोजन को खाएं, इसके बारे में भूल जाएं, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। आइए, आपकी समस्या आपका लहू है, आपको मधुमेह है, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको ठीक करेगा और आपको इसे चंगाई देगा? अपने मार्ग में जाएं और कहें, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु जो आपको चंगा करता है। जाएं, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। आइए, आपकी पीठ, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी पीठ की बीमारी से चंगा करेगा और आपको ठीक करेगा? अपने मार्ग में जाएं, आनंद करें और कहें, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी भी पीठ के साथ कुछ गलत था, केवल बढ़ते रहें, कहते हुए धन्यवाद प्रभु, मैं चंगा हो गया हूँ, इसे पूरे हृदय से विश्वास करें। आपको भी पीठ की समस्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? अब अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और अपने मार्ग पर जाएं और चंगे बने रहें। विश्वास करें, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो सारी बातें संभव है, तो ठीक है। क्या हो यदि मैं आपको कुछ भी न बताऊं? ऐसे ही आप निकल जाते हैं और उस स्त्री पर अपने हाथों को रखते हैं, क्या विश्वास करते हैं वो चंगी हो जाएगी? वे देखते हैं कि क्या गलत है, क्या विश्वास करते हैं वह होगी? यहाँ पर आ जाएं, मैं शैतान को वापस भेजता हूँ, यीशु मसीह के नाम से होने पाए। परमेश्वर की सामर्थ बालक को चंगा करे, आमीन। संदेह मत करना, किसी तरह से संदेह मत करना और वह चंगा हो जाएगा। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। यदि परमेश्वर आपको चंगा नहीं करता है तो आप किसी दिन उस गठिया रोग के साथ बैसाखी पर होंगे, लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको आपके गठिया रोग से चंगा करेगा? तब जाएं और कहें, धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करूंगा और आप मुझे चंगा करेंगे। तो ठीक है, अब आएं। ये वास्तव में आपकी उम्र है, आप बहुत ही परेशान हैं। देर संध्या को बहुत ही परेशानी होती है जब आप काम करते हैं और सब चीजों को करते हैं, आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब आप विश्वास करेंगे तब ये आपको और ज्यादा चिंता में नहीं डालेगी। अपने मार्ग पर यह कहते हुए जाएं, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए श्रीमान, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको हृदय की समस्या से चंगाई देता है? क्या वो आपके हृदय को ठीक करेगा? अब आगे बढ़ते रहिए और कहते जाइए, धन्यवाद प्रभु, मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। परमेश्वर टीबी से चंगाई देता है और आपको ठीक भी करता है, क्या आप इसे अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं श्रीमान? अच्छी बात है, अपने मार्ग पर आनंद करते हुए और कहते जाएं, धन्यवाद प्रभु यीशु। वहाँ जो बाहर है, आपके बारे में क्या है? क्या आप विश्वास करते हैं? श्रोताओं के बारे में क्या है? आप में से कुछ छोटागण, अब विश्वास करें। यह मनुष्य जो ठीक यहाँ पर बैठा हुआ है, उसे कंठ की सूजन है, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको कंठ की सूजन की समस्या से चंगा करेगा? अच्छी बात है, तब आपके पास वो होगा जो आपने मांगा है, आमीन। उसे तेज रक्तचाप है जो ठीक यहाँ उस व्यक्ति के पीछे बैठा है, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको आपके तेज रक्तचाप से चंगा करेगा? इसने आपको छोड़ दिया है श्रीमान, मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा है। कहिए श्रीमान, क्या विश्वास करते हैं कि उन मांसपेशियों की ऐंठन से, जो गंभीर मांसपेशियों की ऐंठन है, क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको चंगा करेगा? क्या आप करते हैं? अपने हाथों को ऊपर उठाएं यदि आप विश्वास करते हैं तो, अच्छी बात है। आपकी पत्नी यहाँ पर बैठी हुई है या उस साइनस की समस्या से चिंतित है, क्या आप विश्वास करती हैं? यह आपको भी छोड़कर जा चुकी है बहन। वो महिला ठीक यहाँ हमारे पीछे बैठी हुई है, उसे न्यूरोटिस है, क्या विश्वास करती है महिला परमेश्वर आपकी न्यूरोटिस से चंगाई देगा? यहाँ एक महिला जो छोटे से कोट को डालकर बैठी हुई है, यहाँ जो लाल रंग का कोट है वहाँ पर बैठी हुई है, उसे साइनस की समस्या है, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको साइनस की समस्या से चंगाई देगा? अपने हाथों को ऊपर उठाएं यदि आप इसे विश्वास करती हैं तो। यहाँ पर कोई ऐसा है जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह के विशिष्ट गुण आज रात हमारे बीच में हैं? अपने हाथ को ऊपर उठाएं और कहें, मैं इसे विश्वास करता हूँ। जो भी यहाँ पर है उसे अपना चंगा करता करके ग्रहण करें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और कहें, मैं इसे विश्वास करता हूँ। उठकर अपने कुर्सियों से खड़े हो जाएं, हाथों को उठाएं। जो कुछ भी यह है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, मैं आपको प्रभु परमेश्वर के नाम से देता हूँ।